मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ معارج کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا، پچھلے ہفتے بھی میں نے انہی آیات پر بیان کیا تھا۔ الحمدللہ، جب کوئی چھینک کے بعد الحمدللہ کہے نا تو یرحمک اللہ کہنا لازم ہے اس وقت۔ جزاک اللہ۔ تو انہی آیات پر پچھلے ہفتے بھی بیان ہوا تھا، آج انشاءاللہ اسی کو لے کے چلوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فالٹ ہے، ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا۔ وہ فالٹ پچھلے بیان میں میں بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، اب چونکہ آگے کنٹینیو کرنے کے لیے اس فالٹ کا تذکرہ ضروری ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلباز پیدا کیا گیا ہے، ہر کام میں اسے کیا چاہیے؟ جلدی۔ جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جلبازی ہوتی ہے بے صبرے میں، بے صبری سے بھی ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان نیچرلی کیا ہے؟ بے صبرا ہے۔ تبھی اس کو فوراً رزلٹ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر جلد بازی ہے تو بہت سے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کوئی کام بھی جلدی جلدی کرتے ہی نہیں ہیں، تو اصل میں وہ بھی جلد بازی ہے ان کی طبیعت میں، تبھی کام نہیں کر رہے۔ انہیں پتہ ہے کام کر کے سکون ملے گا تھوڑی دیر سے، کام کیے بغیر ابھی فوری سکون مل رہا ہے، دیر والے کو ایسی کی تیسی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو لوگ سست ہوتے ہیں نا وہ بھی اصل میں جلباز ہوتے ہیں۔ جلباز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں۔ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا آپ صبح جاگنگ کرو، خوراک پہ کنٹرول کرو، تو آپ کو دماغی بہت زیادہ سکون ملے گا، آپ کو آپ کی صحت اچھی ہوگی، خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن کیا ایک دن میں ہو جائے گی؟ ہے بھائی، اب جن کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ فوری رزلٹ نہیں چاہیے ان کو، وہ محنت کریں گے، وہ صبر کریں گے، بھاگنے میں، دوڑنے میں، اپنی لائف کو مینج کرنے میں، برگر پیزے پھوڑنے پھاڑنے میں، ان سب چیزوں میں وہ اپنے آپ پہ کیا کریں گے؟ کنٹرول۔ اور جو سست ہوگا وہ اصل میں جلد باز ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار اس سے سکون ملنا شروع ہوگا ایک مہینے کے بعد، مجھے ابھی سکون چاہیے، اور ابھی سکون یہ ہے کہ بستر پہ پڑے رہو، اٹھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جو مزہ آ رہا ہے نا لائف میں انجوائے، یار یہ مزہ بھاگنے دوڑنے میں، بولو نہیں۔ ادھر لایا برگر کھا، یار کس نے دیکھا کل کیا ہوگا، کل ہم برگر جیسے بنیں گے، تو جب بنیں گے تو سوچیں گے اس بارے میں۔ تو اصل میں جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں، جو چست ہوتے ہیں وہ جلد باز نہیں ہوتے۔ ایک جلدی پسندیدہ ہے، محمود ہے، ایک جلد بازی نامحمود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ جلد بازی پسندیدہ ہے جس میں آپ ایکٹیو ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا کام سستی سے کرتے ہیں، تو قرآن ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا جو کام سستی سے کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی کام لگا دو نا تو کرے گا ہی نہیں، اس کو کہا جائے کہ بھائی جلدی جلدی نمٹاؤ تو کہتے وہ کہے کہ بھائی اللہ نے جلد بازی سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ بھائی یہ جلد بازی، یہ جو آپ جلد بازی سے کام نہیں لے رہے، یہ سستی کی وجہ سے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ شریعت میں معیوب ہے۔ اور ایک جلد بازی وہ ہے جو پسندیدہ ہے۔ وہ جلد بازی یہ کہ سستی سے کام نہ کریں آپ، तो कुरान जो कह रहा है कि इंसान में टेक्निकल फॉल्ट है वो जल्दबाज है, तो यहां जल्दबाजी से क्या मुराद है? बेसब्रा है। ये आयत को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा? बेसब्रा है, वो चाहता है काम होना और रिजल्ट फौरन चाहिए, और इस बेसब्री में उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। उसकी मैंने पिछले बयान में बहुत सारी मिसालें दी थी कि दुनिया में ये जो जल्दबाजी की नेचर है ना, बेसब्री की नेचर, इससे इंसानियत को कितना नुकसान हुआ, इंसान की इंफिरादी जिंदगी में क्या तबाहियां आती हैं, इससे इज्तिमाई जिंदगी में क्या तबाहियां आती हैं। इंफिरादी जिंदगी में तो इससे क्या होता है, सुस्त हो जाता है इंसान, पढ़ने के बाद रिजल्ट मिलेगा कई साल के बाद, और खेलने कूदने में अभी रिजल्ट मिल रहा है, खेलते रहो सारा दिन, खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे रिजल्ट मिलेगा चंद साल के बाद, जब सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, आपको लाइफ में मजा आना शुरू होगा। लेकिन फोड़ने फाड़ने का मजा क्या है, अभी ये फौरी फोड़ते रहो, इधर से देख का ढक्कन खुला, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये लोग डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं, ये लोग चर्स पीने का मजा फौरन मिलेगा आपको, छोड़ दोगे सबर करना पड़ेगा, लेकिन ये मजा हमेशा होगा, दायमी मजा होगा। चर्स का मजा वक्ती है लेकिन टेंशनें दायमी है, शराब का मजा वक्ती है टेंशनें दायमी है। तो इंफिरादी सतह पर भी इंसान को जल्दबाजी का नुकसान होता है। इज्तिमाई सतह पर मैंने मिसालें दी थी गैर मुस्लिमों की, पूरी दुनिया पे जो बड़ी बड़ी ताकतें जुल्म कर रही हैं, इसके पीछे असल में बेसब्री का उनसर ही है। इराक का आपको बर्बाद कर दिया ना बड़ी बड़ी ताकतों ने, बेसब्री, भाई हमारे इतने असासे हैं ये डबल हो जाएं, ये क्या हो जाएं, हम और अय्याशी करें, भाई सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी तरक्की दी है, इतने अल्लाह ने तुम्हें वसाइल दिए हैं, कुछ दूसरों को भी खाने दो यार, गरीब के मुंह से निवाला मत छीनो। गरीब मुल्कों में अक्सर जंग जो करवाते हैं ना, ये बड़े बड़ी ताकतें करवाती हैं। कुछ गरीब मुल्क दुनिया में ऐसे हैं कि उनमें सोने की काने हैं, उनमें डायमंड की काने हैं, अगर वहां पर अमन कायम हो जाए तो वो मुल्क अरबपति बन जाए, वो मुल्क बहुत तरक्की करना शुरू कर दें। अब बड़ी ताकतों को चाहिए था, कोई बात नहीं यार तरक्की करने दो, हमें बहुत दिया है अल्लाह ने, हम भी खा रहे हैं तो वो भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन सब्र नहीं है किसी को खाता देख के, नहीं भाई ये भूखे नंगे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, बस इनका भी हम खा लें। तो मुल्की सतह पे देखा जाए, कौमी सतह पे देखा जाए, इंफिरादी सतह पे देखा जाए, तो सारा जो फॉल्ट है इंसान में, जिसकी वजह, जिसके साइड इफेक्ट जाहिर हो रहे हैं, वो क्या है? बेसब्री और जल्दबाजी। इससे हमें पता चलता है भाई कि अपनी तबीयत में जल्दबाजी निकाल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि इन फी का खसलतैन युहिब्बुहुमल्लाहु व रसूलुह, ये बहुत जबरदस्त हदीस है, इसको पल्ले बांध लें आप, हमेशा के लिए याद कर लें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मुंह पे तारीफ करने से मना फरमाया है, क्योंकि जब आप किसी की मुंह पे तारीफ करते हैं वो चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उसके अंदर खुद पसंदी पैदा होती है, तकब्बुर पैदा होता है, थोड़े दिनों में वो दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देता है, और वो ये समझता है कि मुझ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अक्सर मुंह पे तारीफ लोगों को नुकसान पहुंचाती है, देखा होगा ना आपने, बाज पीर ऐसे होते हैं मुरीद हर वक्त पांव दबाते रहते हैं, हजरत जी आप तो ऐसे हैं, हजरत जी आप तो, थोड़े दिनों में हजरत जी अपनी औकात भूल जाते हैं। एक जानने वाले थे, अब वो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो इतने शरीयत के यानी वाजे वाजे हकाम को तोड़ते थे वो पीर साहब, और अहले हक के सिलसिले में से थे, ये नहीं कि कोई बिदती या कोई गुमराह लोगों, अहले हक के सिलसिले में से थे, बड़े आलिम थे, और फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहे भाई, सो रहे हैं तो सोते ही चले जा रहे हैं। हमें बड़ा एहसास हुआ कि यार अच्छे भले आदमी है, जमात से नमाज में गायब होते हैं, बिला वजह नमाजें जाया कर रहे होते हैं, मुरीदों का जबरदस्त हल्का उनका। तो मैंने एक दिन किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये अच्छा भले आदमी है, इनको हो क्या किया है? अच्छा, उनकी गलती की इसलाह के लिए अगर कोई शख्स उनको जाके बताए कि हजरत आप ये जो कर रहे हैं काइंडली ये ना करें, कोई बात उन्होंने जैसे कह दी बयान में, तो एकदम गुस्से में क्या हो जाएं, रगें फूल जाएं उनकी ना दिमाग की, अब लोग उनसे बात करते हुए भी डरे हैं कि यार इनको कोई जैसे बयान में कोई गलत बात कर दी ना तो कोई उनको समझा दे कि हजरत ये बड़े एहतराम से नहीं, एकदम वो क्या हो जाती है उनकी गुस्से से दिमाग खराब होना शुरू हो जाए। तो मैं भी परेशान था यार इनको हो क्या गया है, पुरानी बात है अब उन किसी के समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात कर रहा हूं, बहुत पुराना किस्सा है, 10-15 साल हो गए इस वाकये को। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के एक जानने वाले ने कहा कि असल में ये पीर साहब का बुजुर्ग का कसूर नहीं है, इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूं। नहीं आई मेरा ख्याल बात, इनको अपने बारे में क्या हो गया है, वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूं। लोगों ने पांव इतने दबाए, तारीफें इतनी की, हजरत जी कर करके ना इनको वहम हो गया कि शायद मैं वाकई बहुत पहुंचा हुआ हूं। अब जब आपको अपने बारे में ये अकीदा बन जाए कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, फिर कोई आपकी बुराई करेगा तो गुस्सा आना बिल्कुल बजा बन। नॉलेज ही नहीं है तो जाहिर है फिर गुस्सा आएगा ना आपको। तो इसका हल ये नहीं है कि इनको गुस्सा कम करने के बयान सुनाए जाएं। बैठ जाओ भाई। तो इसका हल ये नहीं है कि इनको ये बताया जाए कि गुस्सा इस्लाम में हराम है। इनका फॉल्ट ये नहीं है कि इनको गुस्सा जल्दी आता है, ना 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 ना। बाज लोगों में बीमारी होती है गुस्से के मरीज होते हैं, या गुस्सा उनको जल्दी आता है, वो एक उसका इलाज अलग है। इनका टेक्निकल फॉल्ट ये है कि ये अपने बारे में समझ बैठे हैं कि मैं क्या हूं, मैं बहुत। तो हम में से बहुत से लोग ही अपने बारे में समझने लगते हैं। तो उसका हल ये है कि जिस वजह से ये समझ रहे हैं ना कि मैं नेक हूं, जिस दलील से ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत नेक हूं, तो ये साबित कर दिया जाए कि ये दलील है नहीं। देखो कहीं आपका मुनाजरा हो रहा हो, बहस हो रही हो, अगला हदीस पेश कर रहा है कि ये दलील है, देखो इससे ये मसला साबित होता है, तो आप हदीस का इंकार तो नहीं करोगे ना, हदीस तो दलील है, लेकिन आप ये साबित कर दो कि भाई ये ज़ईफ हदीस है, ये हदीस क्या है, ज़ईफ है, तो उसका इस्तेदलाल क्या हो जाएगा, खुद बहुत कमजोर। किसी ने दलील में गवाह को पेश किया दावे को साबित करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ये साबित कर दोगे भाई ये गवाह झूठे हैं, इनके बारे में पब्लिक की रिपोर्टें सही नहीं है, तो अब उसकी दलील क्या हो जाएगी, जब दलील कलदम हो जाएगी तो दावा खुद बहुत कलदम हो जाएगा। तो बाज दफा इंसान को, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम और आप भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं, किसी की गीबत मकसद नहीं है, आपको वैसे भी क्या पता किसकी बात हो रही है, हम और आप में भी इस मरज में आ सकते हैं। लोग तारीफ करते हैं दलील, हमें अपने बारे में, हम वो जो बुजुर्ग समझ रहे थे ना अपने आप को मैं बहुत नेक हूं, वो किस दलील की बेस पे समझ रहे थे कि मेरे इतने सारे मुरीदीन हैं, सब मुझसे दम करवाते हैं, सब मुझे दुआओं का कहते हैं, सब मेरी जूते उठा के बगल में रख के घूम रहे होते हैं, मुझे नंगे पांव कोई नहीं जाने देता, अपनी चप्पलें मेरे आगे कर देते हैं, और मुझे फलां बुजुर्ग से खिलाफत भी मिली हुई है, फलां बुजुर्ग ने मुझ पर एतमाद भी किया हुआ है, और मुझे फलां दिन ख्वाब आया था उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी दी थी, धमकी दी थी मुझे, और एक दिन मैं सोया तो मुझे खुशबू आना शुरू हो गई अचानक कमरे में। इस किस्म के वाकयात होते हैं लोगों के साथ। तो एक दिन मैंने देखा एक बुजुर्ग आए हुए हैं सफेद लिबास में, वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के। तो इन वाकयात से इंसान को अपने बारे में वहम होने लगता है कि यार वाकई मैं क्या हूं, बुजुर्ग हूं। तो ऐसे आदमी का, और फिर जब फिर उसमें कोई ऐब निकालेगा कि हजरत कभी जमात से भी नमाज पढ़ लिया करें, ठीक है हजरत आप इतने इतने दिन, या कहीं सफर में हो कहीं गए हुए हो तो समझ में आता है आप जो है, या अगर कोई उजर है तो बता दें, उजर किसी के साथ भी हो सकता है, भाई मैं असली जमात से नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बीमारी है फलाव कुछ भी है, एकदम आपको गुस्सा क्यों आ जाता है। तो गुस्सा आना इसकी अलामत है, वो जो बंदे की मैं पूरी ना डिटेल बता रहा हूं, जिसने कहा था ना असल में इनको वहम हो गया कि ये क्या है, ये नेक है, तो ये हम में से किसी को भी वहम हो सकता है, खूब समझ लो, बड़ा खतरनाक बीमारी है ये। तो उसने कहा कि हजरत ये गुस्सा इनका असल में गुस्से के मरीज नहीं है, ये इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि ये क्या है, बहुत नेक। तो जिस दलील की बेस पे ये समझ रहे हैं ना कि मैं नेक हूं, उस दलील का रद्द कर दो। इनको कोई जाके ये बता दे कि लोग जो आपके जूते उठा रहे हैं तो ये इसकी दलील नहीं है कि आप क्या हैं, नेक हैं। लोग सिर्फ सरकार के जितने जूते उठाते हैं ना, इतने जूते दुनिया में किसी के नहीं उठाए गए हैं। लोग आपको सुबह शाम हदिया दे रहे हैं ला ला के। अगर हदिये की बेस पे किसी को नेक समझना है कि इतने लोग लाके हदिये दे रहे हैं, तो ऐसी ऐसी सरकारें मार्केट में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जाहिल पीर जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते, जिनको हदिये करोड़ों अरबों की शक्ल में मिलते हैं, दुम्बे मिलते हैं, बकरे मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं लोग मुझसे जनाब मेरे सामने ऐसे झुक के बैठते हैं, मेरे हाथ पांव चूमते हैं, तो पंडितों के हाथ पांव भी चूमे जाते हैं। कितने पंडित ऐसे हैं जिनके लोग आते हैं तो हाथ चूमते हैं उनके, सजदे करते हैं। तो वो दलील को उन्होंने कहा कि भाई आप कमजोर करार दे दें, ताकि ये जो अपने बारे में इनको वहम हो गया है कि मैं नेक हूं, ये वहम क्या हो जाए, खत्म। जब वहम खत्म हो जाएगा, फिर अगर कोई आके गलती बताएगा कि आपकी ये गलती है, तो अगला सोचने पर मजबूर होगा कि भाई जब मैंने ये दावा ही नहीं किया कि मैं नेक हूं, और मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं हर चीज में सही हूं, तो भाई जब मैं किसी भी चीज में गलत हो सकता हूं, तो फिर मैं सुनूं तो सही ना। देखो, और आसान मिसाल से बात समझाता हूं। हमारे एक जानने वाले, उनके पेट का कोई मसला था या क्या मसला था, डॉक्टर के पास गए, तो वो होता है ना, वो जो मशीन में नहीं डालते, डिजिन करके एक बड़ी सी मशीन में डालते हैं यार, MRI, वो जैसे लगता कबर में जा रहा है बंदा। हाँ, सिटी स्कैन, उनका सिटी स्कैन हुआ। बाद सिटी स्कैन में होता ही है कि डॉक्टर जो बीमारी देखना चाह रहे होते हैं वो तो ठीक निकली होती है, कुछ और निकल आता है, सही है ना? क्या निकल आता है? कुछ और। एक और रिश्तेदार का मैं बता रहा था, उन्होंने जब वो MRI करवाया ना, सिटी स्कैन करवाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई मेदा वेदा तो सब सेट है, आपके तो गुर्दे में एक वो बन रही है, रसूली बन रही है, गुठली बन रही है। हालांकि उनको किडनी का पेन कभी भी नहीं हुआ, कोई पेशाब में प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, फिट फाट बिल्कुल। तो इसका टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाया तो वो कैंसर निकला। डॉक्टर ने कहा आप बहुत खुशकिस्मत हो जो इब्तदाई मरहले में ये ट्रेस हो गया है। तो ऑपरेट हुआ, वो जो होता है कीमोथेरापी और एक और थेरापी होती है, क्या कहते हैं उसको, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी वगैरह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिटफाट घूम रहे हैं वो, ठीक है ना। वो उन्होंने कार्ड दी, बहुत बहुत मामूली सी थी, तो बड़े खुश। जब भी मैं उनसे मिलता हूं ना, हमारे रिलेटिव, में कहता हूं भाई अल्लाह ने आपको जिंदगी दी। कह रहे हैं यार देखो, ना कोई पेन था, कुछ भी नहीं था, अगर ये पालते रहते हम तो फिर एक वक्त में जाके थोड़ी फिर इलाज होता है, और फिर उनकी एज भी ज्यादा है इस उम्र में, तो ये कीमोथेरापी वगैरह वैसे ही आदमी को मार देती है। अब मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर ने जब उनको कहा कि आपके गुर्दे में एक थोड़ी सी रसूली है, कुछ कैंसर का खतरा है, आप टेस्ट करवाएं, वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल क्या हूं, ठीक। क्योंकि ठीक आदमी की अलामत ये है कि दौड़ सकता है, मैं दौड़ सकता हूं। ठीक आदमी की अलामत ये, जो खाए उसको हजम होगा, मैं जो खाता हूं मुझे हजम होता है। ठीक आदमी की अलामत यह है कि भाई जो है मैं सही सुन सकता हूं, मैं सही देख सकता हूं, वो जॉब भी करते हैं, मैं जाता हूं शाम को वापस आता हूं, टाइम पे मुझे नींद आती है, टाइम पे मेरी आंख खुलती है, सही प्रॉपर प्यास लगती है, सही प्रॉपर भूख लगती है, तो मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा। तो ठीक इंसान की सारी अलामतें चूंकि मुझमें पाई जाती हैं, इसका मतलब मैं क्या हूं, ठीक, लिहाजा मैं ये टेस्ट नहीं कराऊं। तो ऐसे मौके पे कोई अकलमंद क्या कहता कि जनाब ठीक इंसान की जो अलामतें आपने बताई हैं ये सिर्फ जाहिरी अलामतें हैं, ये ठीक होने की दलील नहीं है, ये दलील नहीं है ठीक होने की। जिसको आप दलील समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, ये ठीक है, ना ना ना, बाद बीमारियां अंदर ही अंदर जन्म ले रही होती हैं, इंसान को उसका पता नहीं होता, तो ये दलील ही गलत है और वाकई गलत है। कैंसर बाद दफा ऐसे अंदर पैदा हो रहा था, आप फिटफाट घूम रहे, आपको पता आखिरी स्टेज में जाके पता चलता है कि भाई ये तो इन्ना लिल्ला होने वाला है आपका। अब आप डर ना जाए कि आप सबके गुर्दों में भी कहीं रसूली ना हो, जब अल्लाह मारने पर आएगा मेरे भाई, फिर किस किस चीजों के टेस्ट करवाओगे आप। एक कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब बॉडी में कैंसर का पता शुरू में ही चल सकता है। उन्होंने कहा चंद कैंसर ऐसे हैं जिनका शुरू में पता चल सकता है, जैसे मेदे का जो बड़ी आंत का कैंसर है ना, वो टेस्ट से शुरू में ही पता चल जाएगा, तो एहतियातन 50 साल के बाद वो करवा लेना चाहिए हर एक को। बाहर दुनिया में तो लाजमी करवाते हैं, गोरों में जिसकी एज भी 50 साल की होती है ना, वो लाजमी बड़ी आंत का कैंसर करवाते हैं, क्योंकि बड़ी आंत का कैंसर 50 साल के बाद इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो शुरू में ही ट्रेस हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन कैंसर की तमाम किस्में ऐसी नहीं है। हमारे एक रिलेटिव ने डॉक्टर के मशवरे पर करवाया 50 साल के बाद, तो निकल आया, इलाज हो गया, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो ये 50 साल के बाद डॉक्टर कहते हैं कि हर एक को बड़ी आंत के, ये कब से होता है ज्यादातर, तो जवान जब तक इंसान होता है ना, कब्ज बहुत सारी चीजें झेल रहा होता है, 50 साल के बाद कब्ज वगैरह जख्म करते हैं, वो जख्म बिगड़ता है, फिर पता ही नहीं होता, कोई अलामत जाहिर नहीं होती उसकी। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि और कौन कौन से, उन्होंने कहा नहीं पता चलता भाई, कोई पता नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्लाह से कोई भी लड़ नहीं सकता। मैंने कहा गुर्दे का, फलाना का, उन्होंने कहा भाई किस किस का करवाएगा इतने इतनी किस्मों के कैंसर हैं, ये थोड़ी के सारे टेस्ट ही करवाता रहेगा बैठ के, और फिर आज क्लियर आ जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए। तो उन्होंने कहा जिन चीजों का यकीन ही पता चल सकता है वो बड़ी आंत का कैंसर है, उसके अलावा नहीं पता चल सकता। उसमें अल्लाह पे तवक्कुल ही है, बस अपनी आम सेहत आदमी ठीक रखने की कोशिश करे तो चांसेस कम हो जाते हैं, रहते हैं, खत्म नहीं होते। तो खैर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो ये मानते, वो मानते ही नहीं, वो किसी कीमत पे ये कबूल ही नहीं करते कि भाई मैं बीमार हो ही नहीं सकता, तो इलाज होता उनका। तो इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है ना, वो ये मानता ही नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूं। सारे मसले यहां से खड़े होते हैं। सियासी लोगों में भी अपने सियासी लीडर को गलत मान ही नहीं सकते, उसकी किसी गलती को गलती नहीं मान सकते। जब आपने फर्ज कर लिया कि मैं भी ठीक हूं, मेरा सियासी लीडर भी ठीक है, फलां भी ठीक है, फलां भी ठीक है, तो भाई फिर तो जब आप उसके अगेंस्ट सुनेंगे तो आपके मुंह से झाग निकलेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी आंखों में सुर्खी पैदा होगी। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है कि आपने गैर दलील को दलील समझना शुरू कर दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हम भी यही करते हैं, हमारी कोई तारीफें कर देता है आके, लोग अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, तो हम इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि हम वाकई क्या हैं, अच्छे हैं। हमारे हजरत इस पे एक जबरदस्त वाकया सुनाया करते थे कि एक आदमी जो था गांव में कहीं मुलाजमत के लिए दूसरे गांव गया हुआ था, तो किसी ने उसको आके बताया कि तेरी बीवी बेवा हो गई है और तू यहां बैठा हुआ है। उसने कहा यार मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई है? इग्नोर कर दिया उसकी बात को, वो चला गया। दूसरा बंदा आया, कहने लगा यार तू यहां मसरूफ है काम काज में और तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई है, घर में रोना धोना चल रहा है। पहले को तो बहुत सख्ती से उसने मना किया था ना कि तू पागल है, मुझे बेवकूफ समझा भाई। दूसरे को थोड़ा नरम लहजे में, यार भाई मेरी बीवी बेवा कैसे हो सकती है, मैं क्या हूं, मैं जिंदा हूं। तीसरा बंदा आया, अबे तू यहां कामकाज में मशगूल है, तेरी बीवी बेवा हो गई है, उसने रोना धोना लगाया हुआ है, पूरा मोहल्ला घर में जमा हुआ है, तंबू लगा हुआ है। तो फिर जवाब में कहता है अब थोड़ा लहजा और क्या हो गया, यह है इंसान पे माहौल का असर है। जब बातें सुनता है ना, ये तो अपने अगेंस्ट सुन रहा है, अगर अपने फेवर में सुनेगा तो दूसरी दफा में ही मुतासिर हो जाता है, अपने फेवर में सुनेगा ना तो दूसरी दफा में मुतासिर हो जाता है। तो जब इसको तीसरी दफा का, चौथी दफा का आहिस्ता आहिस्ता ना नरमी आ रही है, दसवां या पंद्रहवां आदमी ने जब आके कहा ना तेरी बीवी बेवा हो गई है, इसने सारा सामान लपेटा और घर भागता हुआ जा रहा है। तो लोगों ने कहा क्या हो गया, कह रहे अबे मेरी बीवी बेवा हो गई है भाई, मेरी बीवी क्या हो गई है, मेरी बीवी बेवा हो गई है, उसके आंसू पोंछने मैंने। लोग कह रहे हैं कि अबे तेरा पागल है, तू तो जिंदा है। कह रहा है भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं यार मैं भी पहले ही समझ रहा था कि बेवा नहीं हुई है, लेकिन असल बात क्या है, बेवा हो गई। अब देखो इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ जब खबर है उस पर इंसान को यकीन आ जाता है, तो इंसान नेचुरली अपनी तारीफ सुनने का भूखा होता है। जब इंसान को उसकी तारीफ की जाए ना तो 100% गलत तारीफ भी उस पर असर करती है और वो मानने लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो है। अब वो ये नहीं देख रहे कि मैं नमाज पढ़ नहीं रहा हूं, मैं ये फॉल्ट है मेरे अंदर, जो उनको खुद पता है, फिर भी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, नेक, क्योंकि पब्लिक क्या कह रही है उनको, नेक कह रही है। तो ये पूरी डिटेल मैंने इसलिए बताई आपके सामने कि इन्हीं बातों की वजह से ना शरीयत ने मना किया है कि किसी के मुंह पे उसकी तारीफ ना करो, क्योंकि बहुत कम लोगों में हौसला होता है अपनी तारीफ सुनने का, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि वो अपनी तारीफ सुन के भी बिगड़ते नहीं है, क्योंकि उनको अपनी खामियों पे नजर होती है, अपनी तारीफ से उनको सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, लेकिन खामियां भी उनके सामने होती है, उनको पता होता है वो अपनी औकात से आगे नहीं जाते, वो बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि किसी के मुंह पे उसकी तारीफ ना की जाए, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के मुंह पे उनकी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? बास चीजें ऐसी होती है कि इंसान तारीफ किए बगैर रहता नहीं है, आम उसूलों से हट जाता है। यार ये तो खानदानी हो गया भाई, उसमें सामने वाले को मोटिवेशन भी चाहिए होती है, उसके बिगड़ने का अंदेशा नहीं होता, बल्कि जब आप उसके मुंह पे उसकी तारीफ करते हैं उसको हौसला मिलता है, क्योंकि लोग उन तारीफों पे उसको हौसला दिला नहीं रहे होते, उन खूबियों पे उसको मोटिवेशन मिल नहीं रही होती कहीं से, बल्कि उल्टा बुराइयां लोग बुराइयां कर रहे होते हैं। बास खूबियां ऐसी होती हैं कि बंदे को मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्यों? सारी दुनिया उसकी मुखालफत कर रही होती है, तो अब जो हिमायती लोग हैं वो भी तारीफ नहीं करेंगे तो वो तो बेचारा ठिठर जाएगा ना, वो तो फिर मुआशरे से लड़ नहीं सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने जब दूसरी शादी की तहरीक चलाई ना, तो इतनी बुराइयां इतने जब मैंने की तो इतना हर एक हौसला शिकनी, तो मुझे याद है 100 आदमी हौसला शिकनी करते थे कि तुमने क्या किया है, ऐसे मौके पर अगर एक आके थपकी देता था ना कि माशाल्लाह अच्छा काम किया, मेरा दिल चाहता था इसे गले लगा के फूट फूट के रोऊं मैं, समझ रहे हो? अब वो भी तो तारीफ कर रहे हैं ना, बड़ा खानदानी काम किया, लेकिन उस तारीफ से मुझे नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि क्या मिल रहा है? हौसला, क्योंकि सारी दुनिया क्या कर रही है? मुखालफत। तो बास चीजें ऐसी होती हैं, बच्चों में भी बास काम ऐसे होते हैं, उन पर हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हमारा और आपका किसी के मुंह पे तारीफ करना अलग अलग है। पैगंबर सैयदुल अंबिया किसी के मुंह पे उसकी तारीफ करें, इसका मतलब आपने मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है भाई, अब तो यानी कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। तो ऐसे मौके पे तो बिगड़ने का बहुत ज्यादा अंदेशा है या नहीं है भाई? कोई बुजुर्ग मेरी तारीफ कर दें और एक आम आदमी मेरी तारीफ करे, तो आम आदमी की तारीफ को मैं हल्का बयान करूंगा, भाई फलाने मेरे बारे में कहा है मुफ्ती साहब जबरदस्त, लेकिन कोई बड़ा आदमी कर दे तो मैं तो सारा दिन, अबे वो भाई पता है उन्होंने मेरे बारे में ये रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने कहा है, वैसे मैं हूं, फिर तवाजन भी कर रहा होता है इंसान ना, मैं हूं तो हकीर फकीर, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत नेक है, ये भी तारीफ का एक तरीका होता है कि मैं तो खाकसार, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इत्तेफाक से बस हजरत जी ने फरमा दिया कि बहुत नेक है, मकसद यही होता है कि मैं बहुत नेक हूं, आप किसी गलत फहमी में ना रहे मेरे बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उनकी तारीफ की और क्या फरमाया, और अल्फाज नबूवत कैसे जबरदस्त बलागत वाले, इन्ना फीका खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खसलतें, दो आदतें हैं, इन्ना यकीनी, इन्ना ये ताकीद के लिए आता है। देखो तारीफ के भी बड़े तरीके होते हैं, किसी के अंदर दो अच्छी सिफातें हैं, बहादुर है सखी है, आप जाके बोलोगे यार तुम बहादुर भी हो सखी हो, वेल डन, ये भी एक तरीका होता है ना, बहुत अच्छे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ को भी इंतहा तक पहुंचाया, फरमाया तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं, युहिब्बुहुमल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह को भी बहुत पसंद है और अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद है, यानी मुझे भी बहुत पसंद है वो, तो इसका मतलब वाकई वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो ये क्यों नबी बता रहे हैं कि भाई ये इन चीजों से दस्तबरदार मत होना, आम तौर पे लोगों को ये दो चीजें पसंद नहीं होती हैं, क्यों? ये दोनों चीजें खसलतें जल्दबाजी के खिलाफ हैं, और पब्लिक को जल्दबाजी पसंद होती है, अफरा तफरी पसंद होती है, हुल्लड़बाजी पसंद होती है, फौरन फौरन फैसले करो, फौरन ये स्टाइल होता है पब्लिक का। वो क्या खसलतें आपने फरमाया, अल हिल्म वल अनाह, हिल्म कहते हैं बुर्दबारी, बर्दाश्त, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाते, एकदम जज्बाती नहीं हो जाते, बुर्दबारी। हमारी आदत क्या है, कोई भी कोई शख्स आके बात करेगा एकदम हमारी रगें, हमारी राय के खिलाफ जाएगा ना तो एकदम हमारी रगें फूलना शुरू, गुस्ताखियों के फतवे तो पाकिस्तान में होल सेल के हिसाब से लग रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि भाई अल्लाह का नाम इस गिलास पे लिखा हुआ है। अल्लाह नहीं लिखा हुआ था, जैसे अल्लाह के सिफाती नाम है ना, जैसे अल्लाह के सिफाती नामों में हलीम भी है और करीम भी है, सत्तार भी है, गफार भी है। तो उन्होंने कहा यार ये कंपनी ने ना, कंपनी का नाम फर्ज करो अल गफार कंपनी था, फर्ज कर लो, तो ये तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये गिलास नीचे गिरेगा, पांव में आएगा, इससे बेअदबी होगी, आप इसके खिलाफ बयान दें। मैंने कहा खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, माफ कर दो यार, क्यों इस्लाम का मजाक उड़वा रहे हो इतना लंबा। अब मैं फौरन उनकी बात सुन के जज्बाती हो जाता, यार अल गफार तो किसका नाम है, अल्लाह का नाम, और गफार कंपनी बिलफर्ज होती उसकी ऐसी की तैसी कर देता, उसके साइड इफेक्ट कितने होने थे भाई। अगर गफार कंपनी का गिलास जमीन पे गिरने से अल्लाह के नाम की बेइज्जती हो रही है, तो गफार साहब को तो थप्पड़ मारना इस्लाम में हराम हो गया फिर, जो सच्ची मुच्ची का गफार है उसको तो गाली देना, वो जो मर्जी करता फिरे। आपने कहना नहीं गफार बहुत नेक है, वो उल्लू का पट्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गफार किसका नाम है, और गफार को आपने बोल दिया उल्लू का पट्टा, वो कहेगा यहीं कहीं आपने लिख दिया भाई गफार तो दो नंबर है, उसने तौहीन का केस बना दिया, भाई गफार अल्लाह का नाम है और इसने कहा गफार क्या है, दो नंबर। तो हम क्या तावील करेंगे भाई, अल्लाह को नहीं कहा, ये जो बंदा है ना गफार इसको बोला है, तो कंपनी भी बोलेगी हमने अल्लाह के नाम को नहीं गिराया, वो जो कंपनी का नाम है वो जमीन पे आ रहा है, वो जमीन पे आ रहा है, अल करीम बेकरी कुछ भी लिखा हुआ है। अब मैं आके कह रहा हूं अल करीम वालों ने फ्रॉड किया, मैं नहीं कह रहा कि यह फ्रॉड, ऐसा ना हो कि क्लिप निकला दे यार अल करीम की गुस्ताखी, ये गुस्ताखी के जो पीक पे पहुंचे हुए हैं ना, जुनूनी मजहबी जुनूनी, ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, ये जुनून दुनिया में कहीं भी ये जुनून नहीं है, बात बात पे, जरा जरा सी बात पे कुछ भी निकाल के गुस्ताखी। तो ये हिल्म नहीं है, हिल्म का मतलब बुर्दबारी के उसके बीसियों पहलुओं से भाई उस पर गौर करो कि इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। लोगों का नाम भी मोहम्मद होता है कि नहीं होता। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो, मैंने भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई शख्स ये कहेगा मोहम्मद जो है ना ये कोई कभी उल्टा काम करेगी और के मोहम्मद ऐसा है तो ये तो नबी की गुस्ताखी हो। मैंने कहा भाईजान वो हमारे पैगंबर को नहीं कह रहा, वो तेरे बच्चे को कह रहा होगा। वो मूसा नाम होता है लोगों का, नहीं होता, तो अगर वो गलत करेंगे, मूसा को जो मूसा नाम के लोग होते हैं फांसी की सजाएं भी सुनाई गई है बहुत से लोगों को। अब जज ने कहा कि ये जो मूसा है, ये वाला मूसा जो अंडा मोड़ पे रहता है, अदालत फांसी पे लटकने का हुक्म देती है। आपने कहा मूसा ये तो तौहीन हो गई मूसा। तो जैसे ही नाम को जब किसी का नाम पड़ जाए तो ये उसका नाम है, उस मौके पे ये अल्लाह का नाम नहीं है। ऐसे ही कंपनी पे अगर अल्लाह के सिफाती नाम में से कोई नाम लिखा हुआ है और अल्लाह के नाम की हैसियत से नहीं लिखा, वो कंपनी के नाम की हैसियत से लिखा है या किसी बंदे के नाम की हैसियत से लिखा है, तो भाई उसके वो अकाम नहीं होंगे जो किसके हैं, अल्लाह के अकाम है। कितने लोगों पे इस तरह तौहीन के केस हुए हैं कि स्टिकर पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ था ना, वो आपने किसी के घर पे बाहर जाके स्टिकर लगा दिया, पंफलेट लगा दिया, उसका नया कलर हुआ है, उसने देखा मेरे मकान की ऐसी की तैसी हो गई, उसने जाके वो पंफलेट फाड़, उसने थोड़ी पढ़ता कि उसको अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कहीं नीचे गिरा है कहीं पानी में, उस पर कहीं नबी का नाम लिखा हुआ था, तो केस कर दिया उसको कि तौहीन रिसालत का। और केस में पता है क्या होता है ऐसे मौके पे, SHO भी FIR काटने पर मजबूर है, उसको पता है मैंने FIR नहीं काटी तो ये कटे ना कटे मैं पहले कटूंगा। ये ओरिजिनल वाकयात बता रहा हूं आपको मैं, SHO FIR काटने पर मजबूर। वो बंदा जिसने सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम किया, सारी जिंदगी वो नामों से रिसालत पे डटा रहा, वही तौहीन रिसालत के केस में कहां जा रहा होता है, जेल के अंदर जा रहा होता है। SHO FIR काटेगा लाजमी, फिर केस जाएगा जज के पास। तो जब जज के पास केस जाता है ना, बाहर इतना क्राउड अदालत के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि प्रोपेगंडा करके ना लोगों को कि इसने तौहीन किया, देखो अल्लाह के नाम को जमीन पर, अल्लाह के नबी के नाम को इसने जमीन पर डाला, उसकी कोई नीयत नहीं होती, दूर दूर का कोई इरादा नहीं होता उस बेचारे का, वो सिर्फ इस बेस पे उसने पंपलेट फाड़ा है कि मेरी दीवार क्या कर रहे हैं ये लोग, खराब कर रहे हैं। तो जब जज के पास केस जाएगा तो जज को पता है कि मैंने अगर इस केस में इसको बरी करार दे दिया तो लोग इसको भूल जाएंगे, ये सारा मजमा किस पे चढ़ेगा? मेरे ऊपर। दो बेगुनाह लोगों को ना इस तरह जेल के, जो ये तो मैंने बराह रास्त वकील से सुना है, ये वकील का नाम मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, वकील कह रहा है, जो मुजरिम का वकील है ना, जो मुजरिम नहीं था यानी जिस पे इल्जाम लगा था, उसका वकील कह रहा है मुझे पता है कि मेरा जो मुवक्किल है वो बेगुनाह है, लेकिन मैंने अपनी गर्दन बचाने के लिए उसको जेल भिजवा दिया, क्योंकि बाहर इतना क्राउड ना कोर्ट के बाहर, लोग कह रहे हैं अगर ये बच गया ना तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम वकील को नहीं छोड़ेंगे। तो ये हिल्म बुर्दबारी है, बोलो, ये मिनहाइफुल कौम उजलतबाजी है। वो जो कुरान कह रहे हैं ना कि इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, जलबाज है, तो कौम भी जलबाज, और इंफिरादी तौर पर भी हम क्या हैं? जलबाज। कोई नहीं देख रहे, कोई सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसी जलबाजी पे लेबल क्या लगा हुआ है? इश्क़े रसूल का। ये और बड़ा जुर्म कि जो गलत काम कर रहे हो आप। हमारे नबी क्या जलबाज थे? अगर जलबाज होते तो सुलह हुदैबिया में काफिरों की शराइत मानते क्या आप? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये था कि अभी काफिरों की शराइत मानने में वक्ती नुकसान है हमारा, फ्यूचर किसको, फ्यूचर में फेवर इसका किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। कोई बात नहीं, दब के उनकी शराइत कबूल कर ली आपने। दबने का मतलब यह कि जाहिरी तौर पर दब, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लग रहा था कि सहाबा दब के शराइत कबूल कर रहे हैं, लेकिन अंजाम किसके हक में बेहतर होने वाला था? मुसलमानों के हक में। तो कई बेगुनाह लोग इस चक्कर में अंदर फंसे हुए हैं, जो दाढ़ियां हैं उनकी, नमाज पढ़ते थे, लेकिन किसी ने भी अपनी ठरक निकालनी हो। आप यार, अभी का इस हफ्ते का वाकया बताऊं मैं, 3-4 दिन पहले एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया वर्दी में, यही सहन की बात है, इसी मस्जिद में, कहता है मेरे भाई को तौहीन रिसालत के केस में अंदर कर दिया है। रो रहा था वो, रो रहा था वो, कह रहे उससे खुदा की कसम तौहीन नहीं की है उसने, जू माना अल्फाज उसकी जबान से निकले हैं, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली, वो माफिया मांग रहा है, चीख रहा है कि अल्लाह की कसम मैं नबी का गुस्ताख नहीं हूं। भाई हर आदमी को बोलना नहीं आता कि किस वक्त क्या बोलना है। कह रहे उसको उठा के अंदर कर दिया, किसी पंजाब के किसी गांव का केस बता रहा है, अभी इसी हफ्ते की बात है, यही आया ट्रैफिक, वो वर्दी में ही था ना, ऐसा बौखलाया वाक। मैंने कहा कि मैं कानूनी तौर पर जो मुझसे हो सका मैं आपके साथ ताउन करूंगा, वकीलों का बता दिया उसको, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो एक हो तो आदमी करे भी ना उसकी मदद, एक हो तो आदमी उसकी मदद करे। तो हर जगह जहां आपने जिससे ठरक निकालनी है कुछ भी लगा दो उसको। तो कौमी सतह पे भी हिल्म किसे कहते हैं? बुर्दबारी, बर्दाश्त। हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को इजाजत दे दो कि नबी की तौहीन करें, ना 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 भाई, तौहीन का दावा करने में आप जल्दबाजी मत करें, अगले को एक्सप्लेनेशन का मौका दें, आप उसको मौका तो दें कि क्या बोलना चाह रहा था, मुंह से क्या निकल गया। हमें हदीस में इसकी मिसालें मिलती हैं कि एक शख्स कलमे कुफर नहीं बोलना चाह रहा था, मुंह से कलमे कुफर निकला, लेकिन उसको मोहलत दी गई है, हदीस में इसकी मिसालें हैं। एक मिसाल तो इस वक्त फौरी तौर पर मेरे जहन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स का जानवर गुम हो गया। मिसाल दी नबी ने ना कि एक शख्स जो है अल्लाह को तोबा इतनी पसंद है कि जैसे कोई शख्स रेगिस्तान में हो, उसका ऊंट और साजो सामान गुम हो जाए और वो मौत के इंतजार में लेट जाए, मौत के इंतजार में लेट जाए, और आंख लग गए इसी असना में, जब आंख खुली है तो उसने देखा कि उसका ऊंट और सब कुछ उसके सामने, तो कितना खुश होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरह जब कोई बंदा तोबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होते हैं। इस हदीस में आखिर में है कि वो बंदा इतना खुश हुआ कि उसने कहा ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। ठीक है ना, ये कलमा कुफर है या नहीं है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से नहीं ये बात फरमाई कि वो बंदा कह रहा है अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फराह, इतना खुश हुआ था कि खुशी में उसको पता ही नहीं कि मैं जबान से क्या निकाल रहा हूं। यहां लोग कहते नहीं उसको पता होना चाहिए मैं जबान से क्या निकाल रहा हूं। भाई बाज़ दफा नहीं पता होता इंसान को कि मैं जबान से क्या निकाल रहा हूं, उसको जल्दबाजी में कोई बात हो, उसको मौका तो दो। और ये लोग खुद जब इनकी जबानें लुड़खड़ाती है ना फिर चौड़े में आते हैं, जो दूसरों के साथ कर रहे होते हैं वही इनके साथ होता है, वही इनके साथ होना शुरू हो जाता है। تو اختا من شدت الفرح، نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا، یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی، اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا، وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی، واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے، لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہوں، کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا، تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا۔ تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا، اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، یہ تو اور، کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے، لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہتے تھے نا، اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور جاگتی حالت میں کہے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا، خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا، زبان سے ہی الفاظ، کیا مطلب، اختیار سے نہیں۔ تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا، وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں، غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے، کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ، اور گھبرا بھی رہا ہے، اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں، وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ، پھروں اس کی تعویل کی۔ لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن رجوع نہیں کر رہا، کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے، ڈھیٹ نہیں بے شرم آدمی ہے، انتہائی بے شرم انسان ہے۔ اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کر رہا ہے، اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے، تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو۔ تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی۔ تو خیر، تو اب کیا ہے، الحلم والانا جو ہے نا، حلم کسے کہتے ہیں، بردباری، تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں، بردباری نہ ہوتی، آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو۔ دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں، کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے، لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے۔ لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے، تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم۔ تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے، بردباری ہے، جلد بازی اسلام میں نہیں ہے، ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے، جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا، گستاخ قرار دے دینا فوری فوری، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے، تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں، اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے، آپ اگر جلد باز ہو بھائی، لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو، پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ پھر کیا ہے، بڑا جرم ہے یہ، اور قتل انسانی یہ اور عمر قید، یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں، اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا۔ اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہ سے ساقط ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی، بطور حد، اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں۔ آیت میں نے کیا پڑھی تھی، ان الانسان خلق ہلوا، انسان جلد باز ہے، تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم، تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا، لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصحف آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی، درد تو ہو نہیں رہا۔ اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے، آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا۔ سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا، بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے، بس یہ آیتیں پڑھیں، ترجمہ کریں، پتلی گلی سے نکلیں آپ، اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ असल तो यही है ना उस आयत के, जो हमारी सोसाइटी में किस तरह से कुरान के इन अहकाम की धजियां। कुरान तो आपको अखलाकियात बहुत जबरदस्त सिखाता है। हम तो कुरान के सिर्फ नमाज रोजे को लेके बैठे हुए हैं, अखलाकियात का पूरा बाब, मुआमलात का पूरा बाब, निकाह तलाक के अहकाम और खरीदो फरोख के अहकाम और क्या क्या इंसान के अंदर अखलाकी सिफात होनी चाहिए, यह तो पूरा कुरान का एक बेहतरीन चैप्टर है। और यह अगर मजहबी लोगों में ही नहीं होगा तो भी बहुत बुरा है, और मजहबी लोगों में ना हो और उस ना होने पे लेबल लगा दें इस्लाम का, फिर तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल। वही हो गया, गिलास पे अल-गफ्फार लिखा हुआ है, उनका नाम कुछ और था लेकिन वो नीच गए। वो साहब मुझे कह रहे हैं साहब इसके खिलाफ बयान दें, अल-गफ्फार कंपनी का नाम कुछ और था, लेकिन असल कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता ना, ऐसा ना उसी कंपनी की वाट लगा दें लोग जाके। तो वो गिर गया तो अब क्या होगा, तोहीन होगी अल्लाह के नाम के। भाई मैंने कहा भाई अल करीम भी नाम होता है बस, और रहीम भी बहुत से लोगों का नाम होता है, कंपनियों के नाम भी रहीम होते हैं करीम होते हैं, क्या क्या करोगे भाई। तो करीम तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता, लोग कहेंगे ये करीम फ्रॉडी, अल्लाह का नाम है करीम उसका एहतराम करो। भाई हम करीम साहब जो हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, जब अल्लाह के नाम के जैसे हलीम वही है, लोगों ने शोशा छोड़ दिया था कि हलीम को हलीम न कहो दलीम कहो। एक साहब ने कहा आप दलीम खाते हो, मैंने कहा ये क्या होता है, कह रहे हलीम को दलीम, मैंने कहा हम हलीम को हलीम ही बोलते हैं भाई, जो है वही बोलेंगे। कह रहे नहीं हलीम अल्लाह का नाम है, मैंने कहा जब हलीम को हलीम कहा जाता है उस वक्त किसी का भी जहन इस तरफ नहीं जाता कि ये किसका नाम है, अल्लाह का नाम है। जैसे मूसा का लफ्ज अरबी में उस तरह को बोलते हैं ब्लेड को जिससे हल्क करते हैं ना, अरबी में मूसा किसे कहते हैं, ब्लेड को कहते हैं। अब तमाम फुकहा लिखते आए हैं कि हाजी को चाहिए कि वो मूसा इस्तेमाल करे। अब आपको तो इसलिए ताज्जुब हो रहा है ये लफ्ज सुन के कि आपने कभी ब्लेड के माने में इस्तेमाल किया नहीं, इसलिए आपका फौरन जहन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं तो हम तो सुबह शाम फिकह की किताबों में ये लफ्ज पढ़ते हैं, हम में से किसी का जहन भी इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जाता। इजराए मूसा कहते हैं, जो आदमी पहले से जिसके सर पे बाल ही ना हो वो हल्क कैसे कराएगा, तो भी इजराई मूसा, वो कहते हैं वो मूसा अपने सर पे यूं घुमाए तो एहराम से बाहर निकल आएगा। अब आपने अगर इस पे तौहीन के फतवे लगाए तो भाई फिर तो सैकड़ों मुहद्दिसीन फुकहा सारे गुस्ताखे रसूल सबको उम्र कैद की सजा। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो आलिम वो होता है जो फतवा देने से पहले उसके तमाम पहलुओं पे गौर करे। गुस्ताखी का अच्छा एक और बात आ गई है, आजकल डाकुओं की तस्वीरें लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, भाई ये काम छोड़ दो। बेगुनाह लोगों की तस्वीरें भी डाल देते हैं, तस्वीर बहुत दफा जब तक किसी इंसान को ना देखा जाए ना उस वक्त तक उसकी शक्ल इंसान के जहन में नहीं बैठती है। आपने डाकू की तस्वीर डाल दी, आपको 100 दफा थोड़ी कोई तस्वीर देखा, उस जैसे बीसियों लोग हैं, बहुत से लोग उस जैसे लग रहे होते हैं, कोई भी अपना गुस्सा निकाल सकता है। लेकिन जहां तस्वीर आई बगैर तहकीक के, देखा नहीं कि ये सच्ची मुच्ची का डाकू है भी कि नहीं है, ऐसा तो नहीं उसी शक्ल का आदमी है। ट्विंस के साथ तो ऐसा बहुत होता है, कर्जा एक ने खाया होता है पिटता दूसरा है, बहुत हुआ है ट्विंस के साथ। तो ऐसा हुआ भी एक बेगुनाह आदमी के साथ, डाकू के तौर पर उसकी तस्वीर डाल दी, वो था नहीं डाकू, डाकू जैसा लग रहा था, वो बदनाम हो गया सोसाइटी में। क्या पागलों वाली हरकतें हैं यार, आप फेसबुक पे तस्वीर डालने से पहले 100 दफा सोचो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। लेकिन वही है जल्दबाजी, हिल्म नहीं है हिल्म। तो हिल्म कहते हैं बर्दाश्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया इन नफी का खफलतैन, तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं, एक अल हिल्म। एक और मौलवी साहब का वाकया है, वो बयान करते हुए जबान से उनसे गुस्ताखी हो गई, इसलिए कि उनको उर्दू सही नहीं आती थी, पब्लिक ने पकड़ के जान से ही मार दिया। हालांकि यार उसकी दाढ़ी है, वो नमाजी आदमी है, अकल क्या कहती है ऐसा आदमी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भरे मजमे में नबी की गुस्ताखी कर सकता है, वो पागल है। उसको मौका तो दो यार, जबान नहीं आती आपको। डॉक्टर जाकिर नाइक पे चला दिया था ना, उन्होंने नबी को कुछ ऐसा मुर्दा के लफ्ज को इस्तेमाल कर लिया था, उसकी उर्दू कमजोर है। लोग जवाब में कह रहे हैं जब उर्दू नहीं आती सही तरह तो बोल क्यों रहे हो। भाई ये कहने की बातें होती हैं, इंसान बाज दफा किसी और जबान में अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, उससे गलतियां होती हैं, उसको मौका दिया जाता है। अच्छा ये भी एक बड़ी मुसीबत है हमारी कौम में, अंग्रेजों में हमने देखा है, आप गलत इंग्लिश बोलोगे ना वो अप्रिशिएट करेगा आपको, कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। उर्दू स्पीकिंग में हमने देखा है कि कोई दूसरी जबान का गलत उर्दू बोल रहा है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं भाई। यार वो आपकी जबान बोल रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो कि चलो यार उसकी मादरी जबान नहीं है लेकिन वो आपकी जबान को इज्जत दे रहा है, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मुजक्कर को मोहन्नस बोल रहा है, ये मोहन्नस को मुजक्कर बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये यूं बोल रहा है, ये है सेंस, ठीक है ना। ये भी जल्दबाजी है, गोरों में ये खूबी है, आप गलत इंग्लिश बोलो, कभी मैंने नहीं देखा, मैं तो सफर किया है ना, कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको बोलने देंगे, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, वेल डन बहुत अच्छी इंग्लिश, गलत बोल रहा होता है आदमी, गलत बोल रहा होता है लेकिन वेल डन अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? उनको खुशी होती है यार हमारी जबान तरक्की कर रही है, उनको पता है यार जिसकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो सही नहीं बोल सकते, चार लफ्ज भी बोल रहे हैं तो तरक्की हमारी जबान को, हमें इज्जत मिल रही है। और हम क्या कर रहे होते हैं, कोई गलत उर्दू बोल रहा है बेचारा सीख रहा है उसका मजाक उड़ाना, वो फिर कहता है यार मैं नहीं बोलूंगा आइंदा से। तो खैर ये तो दरमियान में एक बात आ गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन फी का खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं। आप भी कहोगे मुफ्ती साहब हदीस का अगला हिस्सा भी दूसरी भी तो बता दो ना, मैं जानकर तरसाता हूं तड़पाता हूं, मैं तरसा तरसा के जो चीज दिमाग में डाली जाए ना वो खोपड़ी के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, मेरी आदत है तरसाने की। हो सकता है मैं 5 मिनट के लिए खामोश हो जाऊं। तो ये जानकर करता हूं मैं कि इन एक चीज को ना अच्छी तरह, ताकि दूसरी की तलब रहे, तलब बढ़े आपके अंदर। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाए करते थे कि जब किसी शेख से बैत होना चाहो ना तो शेख को हुक्म देते थे जल्दी बैत ना करो, इसको इसके अंदर तलब पैदा होने दो, खूब जब तलब पैदा होगी कई बयानात सुनेगा, पक्की अकीदत होगी, अभी हवाई अकीदत होती है ना, कुछ दिन बैठे नहीं मजलिस में, एक पहली दफा में ही आके बस हजरत आप बहुत जबरदस्त, अबे तुझे कैसे पता चल गया हजरत इतने जबरदस्त हैं, कुछ टाइम गुजार, कुछ ज्यादा दिनों तक बयानात में बैठ फिर पता चलेगा। तो फरमाते थे कि जिस शेख से पहले अकीदत हो, मोहब्बत हो जाए अच्छी तरह से, फिर उससे बैत होने का जो फायदा होता है, एक होता है बैत होने के बाद अकीदत हो, एक होता है अकीदत पहले हो बैत बाद में। फरमाएं दोनों में बड़ा फर्क है, जिस शेख से मोहब्बत अकीदत पहले हो, फिर जब बैत होगे ना ठा करके फायदा होगा आपको, दीन पे ऐसा चलोगे। और एक है बैत हो गए मोहब्बत बाद में जाके पैदा हो रही है, उसमें आपकी स्पीड क्या होगी आहिस्ता। फिर वो एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, मिसाल तो नाजेबा है लेकिन सोसाइटी के हिसाब से, उन्होंने कहा एक शादी वो होती है कि लड़की से शादी पहले हो गई मोहब्बत बाद में पैदा हो रही है, बीवी से तो मोहब्बत हो ही जाती है ना, का इसमें और एक है इश्क पहले हुआ शादी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं, क्या ख्याल है भाई? वो जो इश्क पहले हुआ फिर शादी हो उसमें तो इंसान की नींदें उड़ जाती हैं, उसमें बहुत टूट के मोहब्बत होती है, उसको सारी जिंदगी एहसास रहता है भाई मेरी चाहत मुझे मिली है, एक है मिलने के बाद मेरी चाहत बनी है, वो तो बहुत फर्क होता है इसमें। तो फरमाया करते थे कि तलब के बाद देखो रोजे जब भूख लगती है दबा के फिर इफ्तारी का मजा आता है कि नहीं आता, एक है खाना देख के भूख लगना, वो तो हर एक को लग जाती है, पाकिस्तान में फुल पेट भरा हुआ भी हो ना फिर भी खाना सामने आए तो भूख लगती है, एक है भाई कुछ भी खाना सामने नहीं है भूख की शिद्दत से निढाल हो रहा है फिर जो भी खाना आएगा बहुत मजा आता है उस खाने को खाने में, इफ्तारी में देख लो ना। तो ऐसे ही वो फरमाया करते थे हकीमुल उम्मा कि जिस शेख से बैत होना चाहते हो ना तो ये ना कहो कि बैत हो जाए मोहब्बत तो हो जाएगी, ना 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 ना, पहले शिद्दत हो उसमें तलब पैदा हो बहुत अकीदत हो बहुत मोहब्बत हो यकीन हो जाए कि भाई मुझे इससे बहुत फायदा होगा, उसके बाद जाके बैत होता है तो बहुत तेजी से फायदा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं आप लोगों को तरसाता हूं। हम जब अल्लाह माफ फरमाए बचपन में ड्रामे देखा करते थे, हमारे घर में तो टीवी था नहीं अड़ोस पड़ोस में, और वो ड्रामे भी उस जमाने के बड़े तलीके के होते थे, खैर ड्रामे देखना जायज नहीं है मैं भी तभी कह रहा हूं बचपन में देखा करते थे। वो एक शख्स ने पॉडकास्ट में मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में कहीं मुझसे पूछा कि आपने बचपन में कोई फिल्म देखी, मैंने बता दिया एक दो पुरानी कोई, अल्लाह माफ कर फिर तौबा कर ली थी उनसे, तो वो उसने मेरा क्लिप चलाया मुफ्ती साहब गुस्से में फिल्म देखने गए। अबे मैंने कहा ये क्या लगा है, फिर खैर अंदर बयान वो नहीं था लेकिन ये यूट्यूबर भी अजीब ही होते हैं यार। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ड्रामे जो आते थे ना पुराने जमाने में, तो उसमें पता है क्या करते थे वो, एक आता था शाहीन, बहुत पहले की बात है, उसमें एक कैरेक्टर था बदर बिन मुगीरा, जो बड़ा एक मुस्लिम हीरो गुजरा है। तो वो बदर बिन मुगीरा जो है ना, ड्रामे का एंड ऐसे करते थे कि इंसान का दिल हलक में आ जाए कि अब क्या हुआ, उससे वो उसमें प्यास होती थी अगली किस्त देखने की। तो अब बदर बिन मुगीरा बड़ा हैंडसम स्मार्ट था, हीरो था वो मुस्लिम, जैसे ये उर्तुगुल को लोगों ने बनाया हुआ है। तो अब क्या हुआ कि ड्रामे में फैसला हो गया कि कहानी में कि इसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब हम छोटे बच्चे थे, 9-10 साल हमारी उम्र होगी, हमारी सांसें हलक में आई हुई, यार यही मर गया तो अगले ड्रामे में देखेंगे क्या, हमारी तो मोहब्बतें इसके साथ हैं। तो हम बैठे हुए मन्नतें मान रहे हैं, या अल्लाह इसको बचा ले, या अल्लाह इसको बचा ले। बचपन में ड्रामे देखने का मजा भी बहुत होता था ना, वो पूरा इंसान उसमें घुस जाता था ड्रामे के अंदर ना, वो समझता था सच्ची मुच्ची में ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें यह था कि फैसला किया गया कि इसके सर कलम कर दिया जाए। तो बिल्कुल ड्रामे के एंड में ना उसको फांसी वाला, वो कत्ल वाला ड्रेस पहनाया गया, उसको जमीन पे लिटाया गया, उसका सर रखा गया एक लकड़ी पे ना खास, और फिर वो तलवार लेके ना जल्लाद ने यूं उठाई और ऐसे लेके अभी करीब आया ड्रामा एंड। अगर 40 साल के होते ना, हम हार्ट अटैक से मर चुके होते। अब हम मुसीबत में, अबे क्या हुआ, कटी गर्दन के नहीं कटी यार, इस चक्कर में एक हफ्ता इंतजार करने, पूरा दिमाग कहां लगा हुआ है अगली कहानी की तरफ, कि यार हुआ क्या, कि मरा के नहीं मरा। तो वो नफ्सियात से खेलते हैं ना, उनको पता है अगर अभी काट दी गर्दन, बिलफर्ज काट दी, तो ये अगला ड्रामा देखेंगे नहीं, नहीं काटी तो भी कहेंगे शायद देख ले कोई ना देखे। तो फिर जब अगली किस्त हम पहले से जाके 5 मिनट पहले जाके बैठ गए ना, सारे हमारे कजन वजन हम ड्रामे के आ गए ना, हमारी फुप्पो के अगर टीवी होता तो हमारे अब्बा ने नहीं रखा, वहां बैठे हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इसको बचा ले। अचानक क्या हुआ है कि फिर दोबारा से वो आधी तलवार आई है, तो एकदम दरवाजा धड़ करके खुला और बादशाह सलामत का ऑर्डर आया, ठहरो, यानी वो गर्दन के करीब आके उसने रिवर्स, हमें सुकून मिला, हमने कहा अल्लाह बचा लिया तूने, ये तेरा तेरा कर्म है। तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को क्या करता हूं, तरसाता हूं। तो आपने फरमाया इन नफी का खसलतैन, होना तो ये चाहिए यही बयान खत्म कर दें, इन नफी का खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं, अल हिल्म बर्दाश्त, वल अनाह, अनाह कहते हैं जल्दबाजी में फैसला ना करना। जब हिल्म होता है ना, बुर्दबारी होती है, ये अंदर की सिफत है, तो उस पर एक नतीजा मुरतब होता है कि आप फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करते, फैसला करने में फिर आप जल्दबाजी नहीं। जब आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, यानी ये दो अलग अलग सिफात हैं लेकिन एक दूसरे पर ही मुरतब होती है, एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है ये, तो इनमें असल चीज है अनाह, जल्दबाजी में फैसला ना करो आप, ना किसी को बुरा कहो ना किसी को अच्छा कहो। तलाकें क्यों हो रही हैं, दौड़ दौड़ एकदम निकालते हैं ना। कल किसी खातून ने मसला पूछा मुझसे कि मेरे शोहर ने मुझसे दूसरी शादी की है, ये फिर मैं मिसालें दे रहा हूं, आप कहेंगे फिर लोग नीचे कि हम कुरान सुनने आए, भाई ये मिसालें ही देने से बात चलेगी, आप सही है ना, गाड़ी चलेगी मिसालें देने से ही, ताकि आपको पता चले कि सोसाइटी में कुरान की आयत की मुखालफत कैसे हो रही है। कल एक खातून ने बताया कि मेरे मियां ने मुझसे दूसरी शादी की रिश्तेदारों को बताए बगैर, और जब पकड़े गए तो पिटे, और रिश्तेदारों ने दबाव डाला, उनकी अम्मा ने दबाव डाला कि दूसरी को तलाक दो, तो उन्होंने फोन उठाया, उनकी मां उनके सर पे खड़ी थी और उनकी मां ने उनसे बोला दे तलाक मेरे सामने दूसरी को। इन्होंने मुझे फोन मिलाया, बहुत टेंशन में थे और रोते हुए इन्होंने कहा मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, तीनों तलाकें निकाल दी। उसके बाद कह रहे हैं मेरा बिल्कुल नियत नहीं थी, मुझ पर दबाव था, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुम मेरी महबूबा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। मैंने उस खातून से कहा बेशर्म है, बेगैरत है, मैंने कहा बकवास कर रहा है, दोनों तरफ से हमदर्दियां ले रहा है, समझ रहे हो, अम्मा और खानदान की हमदर्दियां भी, और आपको भी नाराज नहीं करना चाहता। ये मर्द कर रहे होते हैं तलाक देखे ना, मेरा तो मैं चाहता नहीं था, मेरे मुंह से निकल गई। अबे दुनिया में कितने लोगों के झगड़े होते हैं किसी के मुंह से, हर घर में कौन दुनिया में ऐसा जोड़ा होगा जिनकी कभी लड़ाई नहीं हुई है, कौन घर में ऐसा होगा कि जो जो कहता है ना मैं मोहब्बत और मैं ड्रामे, मैं तो उसको बोलता हूं बस किसी और के सामने कहानियां सुनाना जाके। तो हर घर में जहां गोश्त खाओगे वहां लड़ाई देखो इंसान गोश्त खोर है, जितने गोश्त खोर दरिंदे हैं, शेर चीते ये सारे लड़ते हैं, ये मोहब्बत से बैठे रहते हैं, और जितने सब्जी खोर हैं हमेशा मोहब्बत से रहते हैं। बकरियां कभी देखे चीर फाड़ कर दिया बकरी ने, एकदम गुस्सा आया और छलांग मारी, तीन बंदे लिटा दिए उसने, कभी देखा आपने बकरी को क्या खाती है? घास, सब्जियां, ककड़ी भी खाएगी, टमाटर भी खाएगी। दुम्बे को थोड़ा बहुत लड़ता पर यूं टक्कर मारा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होता दुम्बा आया और चीर फाड़ करके पैसी की पैसी कर दी उसने, क्यों नहीं करता भाई? क्या खाता है? टमाटर, खीरे, ककड़ियां, दाल भी खाता है। दाल आप भिगो के रख दें, चने की, मैं तो अपने दुम्बे को खिलाता हूं, चने की दाल भिगो के रख दी, दे दनादन खा जाएगा। बिल्ली को देखा है आपने, गुस्से में गर्राती है, ज्यादा हम पे हमला इसलिए नहीं करती कि हम ताकतवर हैं उससे, लेकिन अपने जैसे को कैसे चीर फाड़ के अलग कर देती है। शेर भी करता है, चीते भी करते हैं। तो इंसान क्या खाता है भाई? ठीक है सब्जी भी खाता है, लेकिन उसकी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोश्त भी है। तो बीवी भी गोश्त खा रही है, आप भी गोश्त खा रहे हैं, और आप चाहते हो हंसी खुशी जिंदगी गुजरे, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको सब्जी पे सेट होना पड़ेगा। जहां लज्जतें भी वही है जहां गोश्त है, जज्बात भी वही है जहां गोश्त है। तो जज्बात होंगे तो मोहब्बत भी होगी, मोहब्बत होगी तो लड़ाई भी होगी, ये हो नहीं सकता। तभी जो मियां बीवी बिल्कुल कहते हैं ना, हम लड़ाई लड़ लड़के तंग आ, मैं कहता हूं गोश्त खाना छोड़ दो, सब्जियों पे आ जाओ, सुबह पापे खाया करो और खीरे ककड़ियां टमाटर इस पे सेट हो जाओ। लेकिन उससे लड़ाई तो खत्म होगी, मोहब्बत भी क्या हो जाएगी, एकदम नीट क्लीन बैठे रहोगे। वो जो कर रही है आपको गैरत ही नहीं आएगी, वो आप जो कर रहे हो उसको, आप अंटियों से दोस्ती भी लगाओगे ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा। शेर गोश्त खाता है, शेर नहीं कहीं इधर उधर सलाम दुआ करके तो देखे, कभी आपने देखा कि वो शेरनी उधर एक और शेर आया हुआ है, शेरनी वहां आके लड़ा रही है और ये शेर कह रहा है कोई बात नहीं चलता है ना, वो शेर के की फाड़ के उसको जो है ना आंखें निकाल देगा। क्या खाता है भाई? गोश्त खाता है, सही है ना। तो इंसान कितना तेज दौड़ता है, बकरियां दौड़ सकती हैं इतना तेज, चीता दौड़ता है, शेर दौड़ता है, इंसान की स्पीड भी बहुत तेज है। तो बहुत सारी सिफात इंसान में कौन सी है? गोश्त वाली। तो घर लड़ाइयां हर घर में होती हैं, तो ये थोड़ी के जमान से धड़ 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 फौरन तलाकें निकाल दी, जबकि आपको पता भी है कि जमान से निकलने के बाद इसमें रिवर्स गियर नहीं है। तो मैंने उस खातून से कहा, ये एक नंबर का बेशरम आदमी है, ये दोनों तरफ से पेड़े खाने के मूड में है कि बेगम की नजरों में भी बड़ा बना रहा हूं और कहूं मैं तो नहीं चाहता था। अच्छा पता है क्या ड्रामे कर रहे होते हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये बहुत होता है तलाक के बाद, हमारे पास केस आते हैं कभी, मैं अब किसी के पर्सनल वो चीजें को नहीं शेयर करना चाहिए वरना मैं बुलाऊं भरे मजमे में, यही है। पता नहीं सर मैं बैठा हुआ था, मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। ये पता है घुन्ने, घुन्ने समझते हैं, ये बीवी की नजरों में ससुराल में घुन्ने बनना चाहते हैं कि असल में बस अचानक यार ऐसे ऐसे भी ले रहा होगा सांस, जैसे मुझे बहुत टेंशन है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई ये औरों के मुंह से क्यों नहीं निकलता ऐसे, एक कमबख्त ने तो तलाक ने जी है। और उसके बाद जब फतवा दिया हमने, भाई तलाक हो गई है, अहले हदीस से फतवा लाया हमने, उसको दलाई से साबित कर दिया ये फतवा गलत है अहले हदीस का, कुरान और सुन्नत में तीन तीन होती है। फिर पता है क्या किया उसने, जब हर तरफ से मायूस हो गया ना, फिर फतवा लेकर आया कि मुझ पे जादू हुआ है, हालांकि मैं जानता था कुछ भी नहीं है। क्या जादू हुआ है? जादू की दलील क्या? कह रहा है यार देखे मेरी अच्छी भली बीवी है, मेरे को इससे लड़ाई भी नहीं है, तो ऐसी औरत को कोई तलाक देगा? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर भी मैंने दे दी, फिर भी मैंने दे दी। अच्छा कह रहे इससे पहले इतनी लड़ाइयां हुई मैंने कभी दी? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर भी मैंने दे दी। अच्छा कह रहे फिर मुझसे साहब ये देखें कहीं से फतवा लाया था ना, तो मुझे गुस्सा आया कि मैंने कहा ये क्या लाए हो यार तुम, ये तो कह रहे नहीं फतवे तो मार्केट में हर तरह के आपको, पाकिस्तान में पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा आपको वहां। तो कह रहे मैं असल में एक गैबी ताकत, उसके अल्फाज हैं ये, कह रहे गैबी ताकत ने मुझे, बीवी ऊपर वाले पोर्शन में थी नीचे तक, कह रहे पता नहीं ये गैबी ताकत ने मुझे उठाया ऊपर लेके गई और मैं वहां जाके धड़ धड़ तलाक कह के नीचे आ गया। मैंने कहा मेरे भाई खुदा के अजाब से डरो, ये कहानियां किसी और को सुनाओ कहानियां, लेकिन कहां अल्लाह का खौफ जब खत्म हो जाए। तो ये क्या है? जल्दबाजी। तो मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा जान छूट गई इस फजूल आदमी से, अच्छा है ये पेड़े खा रहा है। वो भी बेचारे औरत नरम दिल होती है, कहती मेरे हस्बैंड ऐसे हैं नहीं, एक्चुअली वो बेचारे चाहते नहीं थे लेकिन देखे हो गया तो क्या करूं। मैंने कहा वो चाहता था तभी दी है, वरना भाई अड़ जाता ना, कौन क्या बिगाड़ लेता उसका, क्या बिगाड़ लेते खानदान वाले। बोलता है ऐसी की तैसी, जो मर्जी को, हमारे एक जानने वाले ने की है दूसरी शादी, उसके ससुराल ने बहुत बंदूक लेकर आ गए कि तू तलाक दे वरना मार देंगे। उसने कहा मेरे कतले बनाओ टुकड़े करके ना, कौओं को खिला दो, किसी के बाप में दम है मेरी जबान से निकलवा के दिखाए। मैंने कहा मर्द पहली दफा जिंदगी में देखा है, ये अल्फाज थे उसके। ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बहुत दबाव था। उसने कहा ये नहीं कहा, उसने कहा मैं दूसरी तरफ माइल हो जाऊंगा, उसने कहा ये पहली भी मेरी है, इसके हुकूक में कोई कमी हो फिर बंदूक से मेरा सर उड़ाओ आप। ये भी खानदानी, ये नहीं कि आप पहली की दूसरी की वजह से पहली को भूल जाए। कह रहा है ये भी है ये भी है, छोड़ूंगा दोनों में से किसी को नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना दबाव डाला उसके खानदान वालों ने। उसने कहा भाई वो कोई कत्ल की धमकियां दे रहा है, कोई मारने की। उसने कहा भाई कत्ले बना के ना कौओं को खिला दो, ठीक है ना। और उसने कहा कि मैं जहनी तौर पर तैयार भी था कि जब किया है तो फिर मैंने उसको हौसला, मैंने कहा यार मर्द पहली दफा देखा है खानदानी आदमी। मैंने कहा ये ऐसे ही है, रशे के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो दूसरी शादी वालों को भी मैं कहता हूं तप्पड़ है तो पास करो वरना क्या करो बर्दाश्त, वरना पहली को गुजारा करो। दम नहीं है तो छोड़ दो ना, किसी का घर नहीं बर्बाद करो। दम होता नहीं है चस्के लेने के लिए शादी करते हैं, जब दबाव आता है तो चस्के ले चुके होते हैं, छह महीने तक नहीं पकड़े जाते तो छह महीने में इंजॉय कर लिया लाइफ को। अब इधर दबाव आ रहा है तो इंजॉय तो कर लिया है, वो तो वैसे भी पुरानी हो गई है, अम्मा ने दबाव डाला अब्बा ने दबाव डाला, मैं एक्चुअली मजबूर हूं। अम्मा बेचारी क्या मजबूर, वो क्या करेगी, माँ क्या कर, औरत क्या मजबूर कर सकती। अम्मा को बोल दो अम्मा आपके कदमों में जन्नत है, ये मैं नहीं कर सकता। अम्मा आपसे लाख रुपए मांग रही होती ना वो नहीं देते लोग, कितना भी टेंशन में चली जाए अम्मा मेरे पास नहीं है मैं नहीं दूंगा। तो अपने जाती मफाद में तो अम्मा के सामने अब्बा के सामने डट जाते हैं, यहां क्या हो जाते हैं ढीले। तो ये सब क्या है, जल्द शादी भी जल्दबाजी में कर ली बगैर अंजाम सोचे और अब तलाक भी जल्दबाजी में दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी को फरमाया तुम में दो खसलतें हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत महबूब है, एक अल हिल्म बर्दाश्त और दूसरी क्या चीज है अल अना के जल्दी फैसला नहीं करते। क्यों हौसला अफजाई की, कि जिन लोगों में ये दो चीजें होती हैं अक्सर उनकी हौसला अफजाई सोसाइटी में नहीं होती। लोग फौरन आते हैं कि नहीं अब फैसला करो अभी बताओ, आदमी कहता है भाई नहीं बता सकता मैं, तो लोग कहते हैं अबे ये देखो इसमें तो कुव्वत फैसला ही नहीं है, डिसीजन पावर ही नहीं है। ओ भाई गलत डिसीजन लेने से बेहतर है आप डिसीजन ले ही नहीं, बोल दें मुझे नहीं पता, किसी के खिलाफ फतवा दिलवाना हो किसी के खिलाफ। अब एक साहब आए एक मौलवी ने ये किया वो किया फतवा दे, मैंने कहा भाई मैं ये तो फतवा दे सकता हूं जो मौलवी ऐसा करे दो नंबर, नाम लेके बोलूं वो ऐसा है जब तक उसका बयान मैं नहीं सुनूंगा। अब ये रो भी रहे हैं वो जज्बात है, मैंने कहा भाई मैं जब तक दूसरी पार्टी का बयान नहीं सुनूं मैं कैसे फैसला कर लूं कि वो गलत है, आप कितना ही दलाइल दे दो। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें लोग सर पे मुसल्लत होते हैं कि फतवा दो जल्दी से। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जिनसे हमने फतवा सीखा है वो फरमाया करते थे बाज दफा कोई शख्स फतवा लेने के लिए आता है सर पे खड़ा हो जाता है अभी फतवा चाहिए, जबकि वो फतवा तहकीक तलब होता है, उसमें आप जल्दी फतवा नहीं दे सकते। होता है हम वो कह रहे तो मुझे जल्दी जवाब चाहिए, तो फरमाते थे किसी की जल्दी की वजह से आप उस फतवे को अपने ऊपर मुसल्लत मत करो, उसको वापस कर दो, बोलो भाई हम एक हफ्ते से पहले जवाब नहीं दे सकते, अगर आपको फौरी जवाब चाहिए तो कहीं और से ले लें। हजरत ने ये जब हमें नसीहत की ना तो हमारा ख्याल था ऐसा कहां होता होगा, लेकिन जब हम खुद भुगते हैं ना फतवे का काम हमने शुरू किया तो बहुत जगह हमें इसका भुगतना पड़ा है, जो पूछने वाला है सर पे अभी जवाब चाहिए भाई इसको समझना पड़ेगा, इसमें तनकी करनी पड़ेगी, इसको निखारना पड़ेगा, इसको क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे भाई हर चीज में क्या करना है, ये जो गुनाह हम करते हैं ना, ये हदीस तो याद रहेगी ना, दो खसलतें बुर्दबारी और सुस्ती अलग चीज है, ऐसा ना पहले ही पोस्ती है तो और पोस्ती हो जाए कि जल्दबाजी बहुत बुरी चीज है। सुबह जॉगिंग का ख्याल आ रहा है कि चलो आज मैं सेहत अच्छी करता हूं, जल्दबाजी नहीं अगले साल, क्योंकि ये गलत मतलब है भाई, ये सुस्ती है, सुस्ती और जल्दबाजी ये बिल्कुल अलग अलग टॉपिक हैं। पढ़ाई करनी है भाई अभी जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं अभी से पढ़ना शुरू कर दें, हफ्ते के दिन से जिसने ये कहा ना मैं हफ्ते के दिन से पढ़ूंगा, मैं कसम उठा के बोल सकता हूं वो हफ्ता कभी भी बोलो। ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने कहा था हम पेपर की तैयारी करेंगे महीने की पहली तारीख से, वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो दादा नाना बन गए, अब तक वो पहली तारीख नहीं आई है। तो ऐसा ना हो कि आप इस सुस्ती को क्या कर समझना शुरू कर दो। सुस्ती बिल्कुल अलग चीज है, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो इंशाल्लाह अब अभी वक्त पूरा हो गया तो अगले हफ्ते इसी आयत को लेकर चलूंगा कि अल्लाह ने इंसान के बारे में बताया कि बड़ा जल्दबाज है, तो उस जल्दबाजी के बहुत सारे असरात हैं। कुछ असरात तो मैंने जो सोसाइटी में फैले हुए हैं वो आपको बताए, एक असर अल्लाह ने कुरान में खुद बताया है, वो क्या असर है इंशाल्लाह अगले हफ्ते वहीं से लेके हम चलेंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। हाँ भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमाहुल्लाह तआला ने कहा कि आज के दौर में कोई पांच वक्त की नमाज ही पढ़ ले तो वो वलीउल्लाह है, ये तो गलत है, बाकी अहकाम भी तो फर्ज हैं। उन्होंने बाकी अहकाम की नफी नहीं की है, उनका मकसद है कि तहज्जुद अगर नहीं भी पढ़ता, इशराक अवाबीन नहीं पढ़ता, खाली पांच नमाजें पढ़ लेता है तो भी काफी है। ये मतलब नहीं है कि जिना भी करे, चोरी भी करे, फलान भी करे, डिमकाना भी करे। तो पांच नमाजों से मुराद है कि तहज्जुद और इशराक अवाबीन नहीं पढ़ता, और बाकी पांच नमाजें भी अपने लवाजमात के साथ हैं, सुन्नत मुअक्कदा के साथ। जुम्मा और इतवार के दिन मसाइल के सेक्शन में आप एक ही सवाल पर रहते हैं और सवालात नहीं हो पाते, लोग इंतजार में रहते हैं जवाब। मोहम्मद अली आखिर ने कहा शुक्रिया। शुक्रिया जब अदा करें जब मैं आपकी तजवीज पर अमल करूं ना, फिर अगले हफ्ते आप कहें कि शुक्रिया आपने हर सवाल को टाइम दिया। ये बात सही है, मैं बार दफा एक सवाल में बहुत लंबा जवाब कर देता हूं तो बाकी सवालात रह जाते हैं, कोशिश करता हूं सब सवालात को निपटा दूं। मुफ्ती साहब, हमारे इलाके क्वेटा मुगल आबाद में औरत का महर 20-25 लाख होता है, आप इस हवाले से कुछ फरमाएं। इसका नुकसान औरत को भी होता है, मर्द को भी होता है। जिन इलाकों में बहुत ज्यादा महर होता है ना, उनमें लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं और मर्द फिर क्या करते हैं, दूसरे कौमों में शादी कर लेते हैं, वो इतना इंतजार नहीं कर पाते। पहले जमाने में तो ठीक है मेहर बहुत होता था, लेकिन वो सब जगह ही फिर मेहर बहुत होता था, तो मर्द मजबूर होता था कमाने पर। और फिर दो तीन शादियों का रिवाज भी था कि लड़की को अगर ये आदमी पूरा मेहर नहीं दे रहा तो दूसरी शादी वाला ज्यादा मेहर दे रहा है, वो दूसरी बीवी बन जाती थी। अब ना दूसरी शादी का रिवाज है, और फिर मर्द को सस्ते में दाएं बाएं बहुत औरतें मिल रही होती हैं, तो फिर नुकसान ये होता है कि मर्द फिर कहता है भाई ये 20-25 लाख में शादी कौन करेगा, जाओ कहीं और जाके सस्ते में कर लो। फिर छुप छुपा के शादियां कर रहे होते हैं वो। कुछ लोग तो जिना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनमें अल्लाह का खौफ है फिर वो सस्ते में कहीं भी कोई मिल जाती है शादी कर लेते हैं, छुपा के रखते हैं उसको, खानदानी निजाम सारा ऊट पटांग हो जाता है उससे। तो इसलिए जैसे निकाह मर्द की जरूरत है, लड़की की भी तो जरूरत है ना। तो लड़की वालों को चाहिए अगर आपको अपने लिए कोई, अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा दामाद मिल रहा है तो भाई पैसे को बीच में मत लेकर आओ। शरीफ आदमी मिल रहा है, कोई दीनदार आदमी मिल रहा है तो जितनी गुंजाइश है कर दो, इसको रिवाज डालो। होता पता है क्या है, बाप ये सोचता है कि मैंने अपने बेटों की शादी में भी तो इतना मेहर देना है ना, तो मैं वो रिकवरी तो करूं ना फिर। तो भाई बेटों की शादी में भी आप ऐसी जगह करो, यानी सब कंप्रोमाइज कर लें मिलजुल के कि भाई हमने अपनी सोसाइटी में शादी को निकाह को मुश्किल नहीं बनाना है। वरना होता ये है, मैंने जब बात चलाई ना इसकी मेहर कम हो, कहते हैं भाई हम अपने बेटे का तो 25 लाख रुपए मेहर दे रहे हैं तो फिर हम अपनी बेटी का मेहर 25 लाख क्यों ना लें, उधर हमारा डबल खर्चा हो रहा है। तो भाई कुर्बानी दे दो यार थोड़ी सी। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में कुछ लोगों को पहले कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सोसाइटी में कोई चीज राइज होती है। कुछ लोग कुर्बानी दे दें भाई अपने बेटों के लिए, ठीक है मेहर बहुत दे दिया आपने बेटियों के लिए, अब बोले भाई बंदा शरीफ चाहिए हमें, हम मेहर कम लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता रिवाज पड़ जाएगा। वरना इसका लड़कियों को बड़ा नुकसान है, उम्रें निकल जाती हैं। फिर एक नुकसान ये भी होता है, मर्द कहता है जब मैंने इतना मेहर देके शादी की है ना, फिर वो बाज दफा बीवी को जूती की नोक पे रखता है, वो ऐसे समझता है जैसे मैं खरीद के लाया हूं, गुलाम बना के रखता है बाज दफा कि भाई मेरा लाखों रुपए खर्च हुए हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं, तो इसलिए भाई इसको सोसाइटी में इसको आज اس زمانے میں یہ بہت مشکل ہے اتنا مہر پہ نکاح کرنا, اس سے نقصان زیادہ ہے فائدے کے بجائے. میرے کرایہ دار نے ایک ہفتے پہلے اپنی بیوی کو فون پر 6 مرتبہ طلاق دے دی تھی. ان کی اہلیہ کے پاس ریکارڈنگ ہے, اس نے کئی عورتوں کو ریکارڈنگ سنائی ہے, اب ساتھ رہ رہے ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے, ان سے مکان خالی کرایا جائے یا ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ مکان خالی کرا دیں, ان سے بولیں یہ ہم نے شادی شدہ فیملی والے لوگوں کے لیے, یہ کوئی زنا کا اڈا نہیں ہے. تو مکان خالی کرا دیں, بولیں بھائی یہ نکلو پتلی گلی سے, چاو شاوش. کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے, کچھ سوسائٹی میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ قربانی اللہ کے لیے بھی دینی چاہیے. بعض لوگ ہر جگہ محبت 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 کے قائل ہوتے ہیں, اس سے شرعی حکام کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. لوگ 3-3 طلاقیں دینے کے بعد جب رکھیں گے اور لوگ ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں یہ طلاق کا لفظ کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. سعودی عرب میں دیکھو نا کیا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, 3 طلاق مرد نے دے دی ہیں, عورت اگر رہنا چاہتی ہے نا شوہر کے ساتھ تو وہ فتویٰ اس مفتی سے لے لیتی ہے جو کہہ رہے ایک ہوئی ہے, نہیں رہنا چاہتی تو اس مفتی سے فتویٰ لیتی ہے جو کہتا ہے 3 ہو گئی ہیں. ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اجماع کے خلاف چلیں گے, قرآن و سنت کو چھوڑیں گے آپ, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف کی ہے. ایک تو بڑی مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی خود تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ فہم لیتے ہیں جو اسلاف کی ہے, حالانکہ وہ اسلاف کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. تو اسلاف میں کہیں بھی نہیں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے یہ. تو اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ دیوبندیوں کے حوالے دیتے ہیں, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. دیوبندی 100 مل کے بھی لکھ دیں نا, پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اہل حدیث سے تو میں کہتا ہوں آپ تو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں حنفی نے لکھ دیا, فلاں شافی نے لکھ دیا؟ قرآن حدیث سے دکھاؤ بھائی, صحابہ سے دکھاؤ آپ, صحابہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حدیث آپ دکھاتے ہو اس کے میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. تو اس لیے مسئلہ بہت بدیہی ہے, یہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. 3 دے دیں ختم. اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو 3 3 ہوتی ہیں. مسلک کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ 3 کو 1 کہہ سکتے ہو. آپ بولو کہ میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں, میں قرآن حدیث کو نہیں کرتا, تو پھر مسلک میں تو تبھی اہل حدیث اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث نا 3 طلاق کے مسئلے پر کسی بھی سنجیدہ عالم کے ساتھ اس پہ نہیں بات کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹاپک کچھ اور ٹاپک پہ بات کرو, اس پہ نہیں کرو. اچھا بھائی, آج کل لوگ والد صاحب کو ابو کی جگہ بابا کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں, ابو سب سے اچھا لفظ ہے. میرے بھی ایک چینل مجھے بابا کہہ رہے, ایک ابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک پہ جمع ہو جاؤ بھائی. ایک گھر والی ہے اس کے بچے مجھے بابا کہتے ہیں, ایک وائف کے بچے مجھے ابو کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو سارے بابا بول دو یا سارے مل کے ابو بول دو. مجھے تو لفظ ابو پسند ہے, ہم اپنے ابو کو ابو ابو میں بڑا پیار ہے بھائی. ابو کے لفظ میں بڑی شفقت ہے. امی, ابو, مما بھی کہہ سکتے ہیں امی کو, لیکن جو مزہ امی میں ہے وہ مما میں نہیں ہے. امی کیا پیارا لفظ ہے, ابو پیارا لفظ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو نہ لگے, باقی جائز ہے. تو اب دیکھو مختلف چینل ہیں, ایک ابا کہہ رہا ہے, ایک بابا کہہ رہا ہے, اللہ خیر کرے ابو کہہ رہا ہے. ہائے ہائے, مستورات. 4 ویل یا بائک چلا سکتی ہیں؟ 4 ویل تو چلا سکتی ہیں, بائک نہ چلائیں بھائی. مستورات مکشوفات بن جاتی ہیں جب بائک چلاتی ہیں, ایکسیڈنٹ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے اس میں. مردوں کے بائک چلانے میں آپ حادثات کا ریشو دیکھو. آپ, میں ایک دفعہ گیا ہوں عباسی شہید ہاسپٹل, اس کے ایمرجنسی وارڈ میں ہر تھوڑی دیر میں کوئی سر پھٹاوا آ رہا ہے, وہ جو بائک سے گرا ہوتا ہے. آپ بھی جا کے خود تجربہ کر لو, ہر تھوڑی دیر میں نا کوئی زخمی آ رہا ہوگا ایمرجنسی میں. یہ کون ہے سارے بائک والے؟ تو یہ مردوں میں اتنے واقعات ہیں, کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں. جو بھی, میں نے بہت بائک چلائی ہے, میں نے 125 ہونڈا اور کاواساکی GTO 125, یہ 2 بائکیں رکھی ہیں پہلے. تو میں نے کوئی کراچی کا یعنی چپا چھوڑا نہیں ہوگا, اتنی بائک. ایک تو 70 کلومیٹر تو میری روز ویسے ڈرائیو تھی بائک سے, جامع ترشید ماڑی پور سے جاتا تھا اور پھر نیول کالونی ہاکس وے روڈ واپس آتا تھا. 70 کلومیٹر تو میری ویسے ہی ڈرائیو تھی بائک کی. تو ہم نے سن رکھا تھا جو بھی بائک چلاتا ہے واقعات ہوتے ہیں اس کے ساتھ. خود میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں جو اللہ نے بچا لیا پھر بھی, کیونکہ میں بہت زیادہ बाइक की मुझे एक्सपर्ट हो चुका था मैं, जब इतनी चलाई होगी तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ना इंसान को, और चलाई भी हैवी, यानी कराची के लिहाज से तो हैवी बाइक में ही शुमार होता है इसका, होंडा 125 और GTO 125। तो GTO 125 की तो टैंकी आपको पता है वो कुएं के बराबर होती है पूरी, तो इतनी चलाई है बाइक के, जी रिश्ते भी बाइकों पे ही लेने जाता था मैं, तो सोचो कितनी चलाई होगी। ये तो मैंने 2013 या 12 में आके बाइक को बेच के, फिर पहले वो कार खरीदी थी, वो FX वगैरह खरीदी, फिर तरक्की करते करते वगैरह वगैरह, खैर उसको बेचा थोड़ा सा, उसमें काम करा के महंगे दामों बेच के, फिर शेराड ले ली, फिर उसको काम करा के महंगा दामों बेच के, थोड़ा होते होते बड़ी लंबी तारीख है मेरी। तो इतनी मैंने बाइक चलाई है कि आपकी सोच होगी मैं बाइक में बहुत एक्सपर्ट था, क्या हूं भी बहुत एक्सपर्ट। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे वाकयात बाइक के हुए हैं, तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ये अल्लाह ने बचाया हुआ है तो मैं मौजूद हूं। कैसे वाकयात? दो वाकयात तो अभी आपको बता दूं ताकि थोड़ा सा आप होशियार हो जाएं कि ये मर्दों के चलाने की चीज नहीं है, और आप खवातीन को कह रहे हो कि बाइकें चलाएं आप। अब गरीब आदमी बेचारा मजबूर है चलाने पर, चलाए वो, लेकिन बहुत एहतियात इसमें। मैं जा रहा हूं एक दफा, मेरे ये जो अभी बहनों, ये मेरे आरिफ साहब ना, ये जो अक्सर हमारे साथ ऑफिस में आपको नजर आएंगे, ये भी मेरे साथ बैठे हुए, तो मैं बाइक लेके जा रहा हूं, बड़े आराम से एहतियात के साथ चलाता, तेज था लेकिन एहतियात के साथ। बाज दफा ऐसे हादसात होते हैं, आपका कसूर नहीं होता उसमें, कहीं रोड बंद था आगे और उन नालायकों ने क्या किया था, एक डोर लगाई हुई थी जो दूर से नजर ही नहीं आ रही थी कि बंद है रोड, पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यूं भगा के 125 ना, आगे वो रस्सी आ गई। अब आप बताओ बंदे का हशर क्या होगा उसमें, वो तो गया काम से। मैंने एकदम ब्रेक लगाई है और फिसलते हुए हम रस्सी के नीचे से गए दोनों, और रगड़ से जो है ना, मर जाता है आदमी ऐसे मौके पे, 125 पे हो, स्पीड में हो, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। इतनी सख्त रगड़ आई है यहां पे, घुटने छिल गए हम दोनों के। उसके बाद फिर घर में पड़े रहे, इलाज होता रहा, मदरसे की छुट्टी। फिर जिस दिन ठीक हुआ हूं ना, उस दिन बाइक लेकर गया हूं तो रोड जेरे तामीर था, गोल गोल पत्थर उसमें डाले हुए थे, जा रहे हैं अभी उसी पे फिसल गए, दोबारा वही जहां से, और हंस भी रहे हैं, नीचे पड़े हुए हम लोग हंस रहे हैं। वो मेरे दोस्त है ना बचपन के आरिफ साहब, हम दोनों हंस रहे हैं, हंस रोना आ रहे हैं, लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि अभी तो ठीक हुए थे, प्लस पट्टी उतरी थी, एक दिन भी मोहलत नहीं मिली, दोबारा लेटे हुए। तो इतना मसाइल होते हैं बाइक में, इतने एक्सीडेंट के खतरे होते हैं, कई दफा टकराते हुए बचे हैं, कई दफा कलाबाजियां खा के गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। आज के सामने लोगों को शादियों की तरकीबें देनी थी तो बैठे हुए, लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना, उसके साथ वाकया नहीं बल्कि वाकयात होते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह बचा के रखता है, ठीक है ना। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 40 साल बाइक चलाई है, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जा रहे हैं अपनी बेगम को बिठा के, तो क्या हुआ कि वो फुटपाथ से बाइक उनकी गलती से टकरा गई। वो बहुत आराम से चलाते थे बाइक कि हादसा ना हो, फिर भी हादसा हो गया। कहीं कोई तेल वेल सड़क पे पड़ा हुआ था, स्लिप हुए, स्लिप होते ही उनका सर लगा है फुटपाथ की नोक पे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हो, 30-40 साल चलाई होगी उन्होंने बाइक। तो इसलिए हम तो मर्दों के बाइक चलाने के लिए खाए, दुनिया में ऐसे बाइकें कोई नहीं चला रहा होता जैसे हमारे यहां चल रही होती हैं। दुनिया में अगर चलती भी है, सऊदी अरब में और बाकी मुल्कों में हैवी बाइकें होती हैं, उनके मखसूस लाइसेंस होते हैं, बहुत पावरफुल किस्म के हेलमेट। हमारे यहां हेलमेट जो मिल रहे हैं ना, इससे बेहतर है नारियल उल्टा करके पहन लिया करो, वो ज्यादा मजबूत है। ये हेलमेट इतने थके हुए हैं, यही सर में घुसते हैं जाके, किसी काम के हेलमेट नहीं है ये, तो बेकार बेकार। और हेलमेट पहनते कहां है, और कमाल की बात है पहनता सिर्फ ड्राइवर है जो बाइक चला रहा है, जो पीछे बंदा है वो उसका सर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक अंग्रेज आया वो पाकिस्तान में ना, जब उसने देखा कि जो ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट पहन रहा है, पीछे बीवी बच्चे सब बगैर हेलमेट के, उसने कहा क्या मतलब, सिर्फ इस आदमी की जिंदगी, वो अंग्रेज एतराज कर रहा था कि सिर्फ इसका सर कीमती है, बाकियों के सर क्या नारियल है, वो मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, उनका जुड़ना को जरूरी नहीं है क्या। यानी वो हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमने जापान में, थाईलैंड में, हर जगह देखा कि जो भी बाइक पे बैठता है ना, सबके सर पे हेलमेट होता है। औरत बैठेगी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, यानी आपकी वाइफ पीछे बैठेगी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, मर्द के सर पे भी हेलमेट, सबके सर पे हेलमेट। कहते हैं भाई गिरेंगे तो चोट तो उसके भी लगेगी, इसके भी लगेगी, सबका सर बचाना जरूरी है। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ घर के सरबरा का सर बचाना जरूरी है, मातहतों का सर वो किसी काम का नहीं। उन्होंने इतनी टेंशन दी है सरबरा को, वो सबके सर फूटे अच्छा है। तो हमारे यहां लाकानूनियत है, हेलमेट बेकार बेकार किस्म के हैं। हेलमेट से ज्यादा मजबूत तो आपका अपना सर होता है, और कुछ लोगों का स्टेंड करा के सर ही हेलमेट लग रहा होता है उनका। उनको तो मैं कहता हूं आपको तो हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे अल्लाह ने उनको डिजाइन। अच्छा किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। अच्छा खैर, तो खवातीन को आप बाइकें चलाने का मशवरे दे रहे हो और उनको वो कह रहे हो कि भाई वो तो, और फिर बाइक में कॉन्फिडेंस का बड़ा दखल होता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो तो मरते ही मरते हैं बाइक पे। तो खवातीन में थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है, उनमें वो बहादुरी थोड़ी है। कॉन्फिडेंस होता है आदमी मुश्किल जगह से एकदम स्पीड से निकाल लेता है, बाद हवा गाड़ी सामने आ गई, यूं टर्न मारा यूं निकाला उसने, ऐसे होता है। लेकिन खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हाथ पांव एकदम बेचारी भूल जाते हैं उनके। जरा सा कोई अचानक ट्रक सामने आ गया तो उनको नहीं पता होगा कि मैंने क्या करना है। अब जैसे हमने तो वो रस्सी आ गई ना, हमने अपनी तरफ से तो अफलातू नहीं दिखाई, थोड़ा सा यूं स्लिप होते हुए चले गए। लेकिन हमें यह था कि रस्सी से टकरा जाते तो पता नहीं, फिर तो उड़ जाते बिल्कुल ही। लेकिन फिर बाद में हमें चला कि वो रस्सी भी दो स्टैंड पे टिकाई हुई थी उन्होंने, उससे टकराने में इतना नुकसान नहीं था जितना हमें उससे बचने में नुकसान हुआ है। लेकिन अब चलाने वाले को थोड़ी, उसको तो फौरन फैसला करना होता है। तो खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घबरा जाती हैं। तो ऐसे मौके पे भाई वो ट्रक कैसे के नीचे आने का भी खतरा है, किसी और बाइक से टकरा गई है वो स्लिप। फिर यहां कौन तमीज से राइडिंग कर रहा होता है, सारे ऊट पटांग को यहां से निकल रहा है उधर, बाइकों वालों को हॉर्न दे के देखो, फास्ट ट्रैक पे चला रहा होता है, आप उसको हॉर्न दो कि तू साइड पे हो जा, उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देता है। तो जब जिस मुल्क में ये हालात हो उसमें आप बोलो खवातीन बाइकें चलाएं, इसका मतलब आप जनाजे उठाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए भाई। जहन के लिए, अच्छा जैनब के लिए दुआ की दरख्वास्त है, सिविल हॉस्पिटल में दाखिल है, दिल से दुआ जी अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अकायद कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर बयान करें, मुख्तसर नहीं तफसील से बयान करेंगे। और हम ये बयान करने जहलम गए थे, मोहतरम को मौका मिल गया था कि अगर ये अकायद कुरान और सुन्नत के खिलाफ होते तो सामने आके दो और दो चार की तरह बता देता। तो भागा कौन है भाई, भागता वही है जिसके दिल में चोर होता है। इंशाल्लाह इस पे मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा अल मुहन्नत अल मुफन्नत पे। आप लोग दुआ करें अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे, क्योंकि हम फारिग नहीं है, बीसियों काम है, फिर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा। मुफ्ती साहब डीएस, ये क्या लिखा है भाई, डीएसपी फंड का क्या हुक्म है, वजाहत से बता दें इसकी क्या सूरत और क्या हुक्म है। एक तो वो जीपी फंड होता है ना, ये उसी वही फंड है, उसी तरह का है, वही फंड होता है ना, तनख्वाह से सैलरी से आपके कुछ अमाउंट कटती है बाद में इजाफे के साथ मिलती है, अगर वही है तो वही जायज है जी। मुख्तलिफ नामों से है, देखो अगर आपसे लोन ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, उस पर आपको नफा दे रहे हैं किसी कारोबार में लगाए बगैर, एक मुतय्यन अमाउंट दे रहे हैं, वो सूद है चाहे किसी भी नाम से हो। और अगर आपकी किसी पैसे ले नहीं रहे बल्कि तनख्वाह से काट रहे हैं और तनख्वाह से कट करने के बाद में बढ़ाकर देते हैं तो वो सूद नहीं है। देखने में सूद लगता है लेकिन वो हकीकत में जो जीपी फंड में होता है तो वो सूद है नहीं, समझते हो। मोहम्मद अली बुनेर केपीके से, इंश्योरेंस कंपनी जो मंथली पैसे लेते हैं और इसका इलाज इसका क्या इस्लाम, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, इलाज हमें फ्री में देते हैं इसका क्या इस्लाम में क्या हुक्म है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ मामला हराम है, नाजायज हैं। अगर किसी ने कर लिए हो या कानूनी मजबूरी से कर ली हो तो फिर उसका हुक्म यह है कि जितने पैसे आपने जमा कराए हैं ना या फ्यूचर में जमा कराएंगे वो आपके लिए हलाल है। आपने किसने एक फर्ज करो एक साल में 2 लाख रुपए किसने जमा करा दी आपने, तो वो आपकी जाती रकम है, किसी भी तरह ले सकते हैं। अब आपको इलाज की जरूरत पड़ी तो 2 लाख का इलाज आप उससे करा सकते हैं। आपने 1 लाख किस्तें जमा कराई, इलाज पे खर्चा 2 लाख का आ रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करके ले रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख आप जमा करा चुके हैं, 1 लाख अगले साल जमा कराएंगे ना, तो यूं समझो कि वो आप पैसे इसलिए आप वो इलाज हलाल है कि आपने वो पैसे जमा कराने, इजाफी नहीं ले सकते आप, वो इजाफी वो हराम और नाजायज है। बच्चा अपने दिल पर कैसे काबू रखे, बच्चे अपने दिल पर कैसे काबू रखे। बच्चों के तो माँ बाप उनको समझाते हैं भाई के तरबियत करते हैं, वो खुद से कैसे करेंगे। मुफ्ती साहब सूद तो बैंक वाले खाते हैं, तो क्या बैंक से कर्ज लेना जायज है, क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जो बगैर सूद के कर्जा दे। बैंक से कर्जा लेना हराम है क्योंकि सूद पे कर्जा देता है, बाकी वो खाते हैं तो उनको गुना मिलेगा, आप ना खाएं। अलबत्त वो कर्जा जो आप लेते हैं वो कर्जा बजाते खुद रकम हराम नहीं होती, उससे कोई कारोबार करेंगे तो कारोबार जायज होगा, क्योंकि हराम वो रकम है जो आप बैंक को दे रहे हैं सूद की शक्ल में, उससे बैंक जो कारोबार करेगा वो हराम होगा, समझते हो। एक बंदे ने अपने वालदेन के साथ, क्या यार राइटिंग तो सही लिखा करो, वो अरबी में जो लिखा है पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। एक बंदे ने अपने वालदेन के साथ कुछ शोर पता नहीं क्या लिखा है, तो इसने गुस्से में बीवी को तलाक दी, और बीवी ये क्या लिखा है, कहां थी पता नहीं कहां थी, तो क्या तलाक हो गई, यहां नहीं थी गांव में थी तो क्या तलाक हो गई, और 3 दफा कही। बीवी का सामने होना जरूरी नहीं है भाई, जब 3 तलाकें दे दी हैं तो बीवी चाहे कहीं भी हो, बस कब्र में ना हो, दुनिया में हो, तो 3 तलाकें देने से तलाक वाकई हो जाती है। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सहाबा ने नबी की एक एक अदा महफूज की, इसको बयान किया यहां तक कि आपके दांतों में खला था और आपके कितने बाल सफेद थे, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि सहाबा ने नबी की आखिरी नमाज नहीं बयान की और उम्मत में इस कदर इख्तलाफ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। सहाबा ने नबी की आखिरी नमाज भी बयान की है अपने अमल से, समझते हो, और कुछ सहाबा ने उसी अमल को फॉलो किया जो नबी का पहला अमल था, तो सहाबा ने बता दिया कि दोनों पहलू हैं इसमें, ये वाला पहलू भी है और ये वाला पहलू भी है, ये सहाबा बयान कर दिया सहाबा ने कि अब इसमें किसी मसले में भी शिद्दत जायज नहीं है। जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद की राय ये थी कि नबी ने आखिरी उम्र में रफुल दैन तर किया तो आपने बगैर रफुल दैन वाली नमाज सिखाई, जैसे कि तिर्मिजी में है। अब्दुल्लाह बिन उमर की राय ये थी कि नहीं रफुल दैन किया है, तो ये दोनों असहाब की मुलाकातें भी हुई यकीनन, और इमाम तिर्मिजी बयान करते हैं बहुत सारे सहाबा रफुल दैन नहीं करते थे, लेकिन कुछ सहाबा करते भी थे जिनके इमाम तिर्मिजी ने नाम नकल किए, लेकिन उन दोनों में रफुल दैन के मौजू पे हसासियत नहीं थी, सेंसिटिविटी नहीं थी, तो सहाबा ने अपने अमल से बता दिया कि इसमें दोनों पहलू निकलते हैं, यूं भी किया जा सकता है अगर कोई इस राय को तरजीह देता है, और अगर कोई उस राय को तरजीह देता है तो यूं भी किया जा सकता है। अब मसला ये नहीं है कि रफुल दैन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मसला ये है कि सहाबा ने बता दिया कि भाई दोनों तरह से, कुछ लोगों की वो राय है, जिनकी वो राय थी उन्होंने इनको बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि ये राय है इन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा, लेकिन लड़े दोनों ने इस टॉपिक पर, ना उनके मुनाजरे हुए ना उनकी बहसें हुई, तो उम्मत में तहम्मुल भी तो पैदा कराना है ना, बुर्दबारी भी तो पैदा कराना मकसद है ना। तो अब मसला ये नहीं है कि रफुल दैन से नमाज होती है कि नहीं होती, मसला ये है कि कुछ तबके ने इसको ईमान और कुफर का मसला बना लिया है, वो समझते हैं कि जो रफुल दैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं वो अंधे मुकल्लिद हैं, वो नबी की नमाज को, उनको जब भी दलाइल उनके खिलाफ दिए जाए ना तो वो उनके मुंह से गुस्से से ऐसे झाग निकलता है। मैंने जब भी रफुल दैन पर कुछ रिकॉर्डिंग करवाई है ना, नीचे जो तबीयत से लोगों ने गालियां दी हैं, इससे पता चलता है कि ये पागल हुए हुए लोग हैं, ठीक है ना, ये वो लोग नहीं है जो बात सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं, बिल्कुल पागल हो गए ये। तो जब अल्लाह ने अपने नबी के और सहाबा के जरिए हुज्जत तमाम कर दी, इख्तलाफ पैदा कर दिया, तो इख्तलाफ पैदा करने का मतलब ही है कि इसमें आप एक भी एक्सट्रीम लेवल पे जा नहीं सकते, तो जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो पागल है, वो गलत कर रहा है, तो सबको मिलकर उसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, चाहे वो रफुल दैन के मसले में हो या रफुल दैन ना करने के मसले में हो। तो अब अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो उसकी गलती है, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो ये मसला आज का थोड़ी है, तो सहाबा में भी इख्तलाफी मसला था ये, तो हमें तो नहीं मिलता कि कभी फड्डा हुआ इस मसले में उनके दरमियान। इमाम अबू हनीफा का इमाम औजाई से मशहूर मुनाजरा है, एलाउ सुरन में उसकी सनद भी है, क्योंकि किसी अहले हदीस ने कहा था इसकी सनद दिखाओ, तो अभी तो मैं किताब लेके नहीं बैठा वरना मैं सनद दिखा दूंगा इसकी इंशाल्लाह। यदि मौका मिला तो इसे में इमाम औज़ाई ने इमाम अबू हनीफा से कहा कि आप क्यों रफुल यदैन नहीं करते। इमाम औज़ाई ने कहा आपकी इमाम अबू हनीफा ने कहा आपके पास क्या दलील, उन्होंने अपनी सनद पेश की। फिर इमाम हनीफा ने अपनी सनद पेश की, उसमें उन्होंने सनद पेश की कि मुझसे हम्माद अलकूफी ने बयान किया, मुझसे इब्राहिम नखई ने बयान किया, मुझसे अलकमा या असवद उनमें से किसी का नाम लिया उन्होंने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से बयान किया कि अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज ना सिखाऊं। फिर कहते हैं उन्होंने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन किया, उसके अलावा नहीं किया। तो इमाम औज़ाई ने कहा कि मेरी सनद में तो ये रावी हैं, अपनी सनद का उलूह बयान किया कि वो अब्दुल्ला बिन उमर और इमाम मालिक और इमाम ज़ुहरी आ रहे हैं उसमें, इतनी आली सनद है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हमारी सनद तो उससे भी ज्यादा आली है, क्यों? हमारी सनद फुकाहा की है, हम्माद अल कूफी बुखारी के रावियों में से हैं और कूफा के सबसे बड़े फकी हैं, मुफ्ती हैं। मुफ्ती वो हदीस बयान करेगा जो वो काबिले अमल समझता है। तो हम्माद अल कूफी बयान कर रहे हैं जो बहुत बड़े फकी थे कूफा के, फिर इब्राहिम नखई बहुत बड़े फकी थे कूफा के, फिर अलकमा और अस्वद का तो बहुत बड़ा मकाम है। उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा ने कहा कि अलकमा और अस्वद, ये अस्वद के बारे में क्या, ये अलकमा के बारे में, कि अगरचे ये अब्दुल्ला बिन उमर जैसे सहाबी नहीं है लेकिन इल्म में उनसे कम नहीं है, ये अब्दुल्ला बिन उमर से, यानी तुम अगर सनद में अब्दुल्ला बिन उमर को पेश कर रहे हो तो मैं अलकमा या अस्वद को पेश कर रहा हूं, जिनको अगरचे अब्दुल्ला बिन उमर को नबी की सोहबत मिली है और अलकमा और अस्वद को नहीं मिली, लेकिन इल्म में ये उनसे कम नहीं है। फिर आगे अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में फरमाया, वो अब्दुल मसूद वो तो क्या है, वो तो इब्ने मसूद है। तो इमाम औज़ाई ने फिर ये नहीं कहा कि अबे जाओ तुम्हें आता क्या है, चुप हो गए, बस खामोश हो गए, भाई ठीक है यार इनके पास भी दलील है, आगे दूसरे काम करो यार जाके, अब वो यूं कर ले वो यूं ना करे, बाकी चीजों में सारे मुश्तरक थे ना। इमाम हनीफा ने उनसे कहा कि देखा अब बता आ गई ना, अब बता हम्माद के मुकाबले में ला, तू अपना रावी लेकर आ, इब्राहिम नखी लाया हूं, तू ला। अब इनसे नहीं, इनके बस का नहीं है, अब तुम मंजन बेचो। या उन्होंने इमाम हनीफा को कहा, इमाम अबे तुम जाके मंजन बेचो, बस तुम जो कूफा के फकी बने हुए हो ना, ये मंजन बेचो जाके, तुम्हें क्या पता। ये सारे इस दौर के जाहिल स्कॉलर्स का काम है ये, जिनको कुछ भी नहीं पता कमबख्तों को, ये उन लोगों के मंजन है जो, और कहते हैं हम मंजन लोग मंजन, अबे भाई सबसे बड़े मंजन तुम खुद बेच रहे हो। ये मसला रफुल यदैन का आज का थोड़ी है, सदियों से चला आ रहा है और सदियों से इख्तलाफ चला आ रहा है। और इमाम तिर्मिजी का ये मकूला याद रखा करो, इमाम तिर्मिजी छोटे आदमी नहीं है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और शागिर्द हैं, और नकले मजाहिब में यानी अकवाल नकल करने में बड़े मोतबर और मुस्तनद माने जाते हैं, उनकी बात को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो वो क्या कहते हैं, जब रफुल यदैन करने की हदीस जिक्र की है ना उन्होंने, तो अल्फाज हैं वबिही यकूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अहले इल्म में बास सहाबा का मजहब है, और फिर बास के उन्होंने नाम हाईलाइट किए हैं। लेकिन जब रफुल यदैन ना करने की हदीस जिक्र की है तो अल्फाज सुनो, वबिही यकूलु गैरु वाहिदिन मिन अहले इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अहले इल्म में बहुत सारे असहाब का मजहब है। हालांकि इमाम तिर्मिजी खुद रफुल यदैन करते थे, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, सहाबा में ज्यादातर अहले इल्म वो रफुल यदैन नहीं करते थे, उन्होंने भी इस मसले को हल्का लिया है, ठीक है ये भी एक राय है। तो ये सारे जो है ना मुद्दईसुस और गवाचुस, तो ये इस दौर की बिदत है जो इन लोगों ने रफुल यदैन के नाम पे मंजन शुरू किया हुआ है। और हमें कहते हैं मुतशद्दिद, हमने तो आज तक किसी रफुल यदैन करने वाले पे ना फतवा लगाया ना उसको कहा, ये खुद मुतशद्दिद हैं, ला के लोगों को हदीसें दिखा रहे होते हैं, तुम नहीं करते, उनपे उनको उलमा से बदगुमान करते हैं, इख्तलाफ पैदा करते हैं उनके अंदर, और एक ही चीज की गिर्द घूमते हैं इनकी तकरीरें, तो उसको बड़ा कमाल समझते हैं, और फिर अपने खिलाफ सुनते नहीं है। सुनने मेरे पास एक साहब आए, मैं बयान के दौरान खड़े हो गए कि आप तो रफुल यदैन की तो इतनी हदीस है, मैंने कहा दो सर्दों के दरमियान भी तो है हदीस रफुल यदैन की, फौरन फतवा लगा दिया वो तो जईफ है। मैंने कहा नासिरुद्दीन अल्बानी को मानते हो, कहते हैं, मैंने कहा उन्होंने कहा है वो सही हदीस है, तो दो सर्दों के दरमियान भी करो। एकदम उछलने लगा कूदा, भाई ये कुछ डिप्रेशन का मसला है, ये कोई इल्मी, मैं नहीं कह रहा सारे अहले हदीस ऐसे होते हैं, बहुत से मोतदिल अहले हदीस भी हैं, वो इस मसले को बड़ा मसला नहीं समझते, लेकिन एक आजकल के स्कॉलर ने जो नए नए आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया इस मसले को। अहले कूफा में कोई भी रफुल यदैन नहीं करता था, और अहले कूफा को आप क्या समझते हो, कूफा तो इल्म का मरकज था, हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वहां जाके आबाद हुए थे, उनके शागिर्द आबाद हुए, हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद तो इल्म का मरकज थे, उनके असहाब उनके शागिर्द में कोई भी रफुल यदैन नहीं करता था। تو اور کوفہ کے بارے میں علم ہمارے پاس جو قرات پہنچی ہے نا قرآن کی, بہت ساری قراتیں ہیں, سب سے مشہور قرات کوفہ کے قاری کی ہے. تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. حدیث امام بخاری نے یہ بات خود لکھی ہے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا, مکہ مدینہ اتنی دفعہ, حجاز یعنی اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, کوفہ کتنی دفعہ گیا. کہتے ہیں لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز تھا کوفہ. لوگ صرف کربلا واقعہ والا واقعہ جانتے ہیں, وہ تو فتنہ انگریزوں نے کیا تھا. باقی جو صحابہ کے شاگرد تابعین تبع تابعین جو تھے, ہم تو ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم وہ ان باغیوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے میں ان کا شمار حسینیوں میں ہوتا ہے, یزیدیوں میں نہیں ہوتا. امام حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار. اور پھر میں نے مسلم میں ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کی سند میں سارے راوی حجاز کے ہیں, مکہ مدینہ کے. اس کے نیچے علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہوں. تو علم حدیث بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. تو اگر ہم نے نماز بھی بغیر رفع الیدین والی کوفہ سے لے لی کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ اور ہم کھلا دل بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ثبوت ہے رفع الیدین کا. بھائی ٹھیک ہے, ہماری رائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا ایک جیسا معمول نہیں رہا, قلت سے کثرت کی طرف یا کثرت سے قلت کی طرف, تو ایک معمول نہیں ہے. بخاری کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معمول نہیں تھا نبی کا رفع الیدین میں, اور باقی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو جب یا تو قلت سے کثرت کی طرف اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, تو پھر ہم اس کے قائل ہیں کثرت سے قلت کی طرف. پہلے دو سجدوں کے درمیان بھی کیا, ہر رفع ہر تکبیر پہ سلام کے وقت بھی کیا رفع الیدین, وہ بھی چھوڑا ہے آپ نے, دو سجدوں والا بھی چھوڑا. تو اگر ہم نے مان لیا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت, تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باقی بھی آپ نے چھوڑ دیے. تو ہماری رائے ہے یہ, تو اس میں کیا آئے گا؟ باقی ہمیں کیا جا رہا ہے یوں کرنے میں؟ اس کو کہتے ہیں منجن بیچنے. ابے کوئی یوں کر لے گا تو ہمارا کیا ہو, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا امام کی تنخواہ بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اتنی سی بات کو اتنا بڑھایا ہوا ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث جو اقرب الی القرآن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قومو للہ قانتین, خشوع و خشوع سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی, تو نہ کرنے والی جو حدیث ہے وہ خشوع و خشوع کے زیادہ قریب ہے. پھر کوئی اس پہ اشکال کرے کہ نبی کو کیا خشوع و خشوع کا پتہ نہیں تھا, تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی سے دونوں ثابت ہیں نا, تو ہم ترجیح اس کو دیں گے جو اقرب الی القرآن ہو, کیونکہ اس میں بار بار ہاتھ آپ کو ہلانا نہیں پڑتا. اور حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, اسکنوا فی الصلاۃ. یہ تو آپ نے رفع الیدین کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں سکون پیدا کرو. سلام کے وقت بعض صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے, آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون پیدا کرو. تو اس کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے منافی سمجھا. تو ہم کہتے ہیں یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کثرت سے رفع الیدین ہوتا تھا وہ شروع کا عمل تھا, کسی حکمت سے کیا ہوگا آہستہ آہستہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا. تبھی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے بھی قائل تھے. وہ کہتے ہیں اس کے چھوڑنے کی بھی تو نبی سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑ دیا, تو یہ بھی ثابت ہے. تو جیسے ہم اہل حدیث حضرات دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک مانتے ہیں, کس حدیث کی بیس پہ؟ نبی نے تو نکاح کے مت کرو. عمل سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ صحابہ کے یا نبی کے عمل سے کہ بعد میں دو سجدوں کے درمیان. تو ہم کہتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود جو صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے. اور ترمذی کی حدیث بالکل صحیح ہے, جو انجینئر نے کہا ہے نا, کوئی بھی کسی نے بھی صحیح نہیں کہا. بالکل لمبی جب پھینکنے پر آتا ہے نا ایک بندہ, اور کمال کی بات ہے جب آپ لمبی پھینکتے ہو, ہم جب اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں عقیدوں پہ بات ہوگی, ہم نے جو جو چیزیں پھینکی ہیں ان پہ بات نہیں ہوگی. پھر ہم جب عقیدے پہ بات کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچے, آپ نے کہا عقیدوں پہ بھی بات نہیں ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگی, کسی اور طریقے سے ہوگی. بھائی تم کسی بھی طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو چیلنج کیو کہ کیوں تھے آپ نے. اور عقیدوں پہ بات ابھی میں کروں گا انشاءاللہ, المحنت پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. قیام ٹائم تو ویسے بھی قیامت تک دیا ہوا ہے نا, پھر جلدی کس بات کی. تو اور میں نے اکثر رفع الیدین والے دیکھے تمیز سے کرتے بھی نہیں ہے رفع الیدین, وہ تو یہاں تک ہے, اکثر یوں کر رہے ہوتے ہیں یوں بس یوں یوں. بھائی جب ایک چیز کو آپ سنت مانتے ہو تو پراپر طریقے سے تو کرو اس کو, आप पूरे हाथ तमीज से उठाओ, यूं 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 कर रहे होते हैं, इससे तो बेहतर है ना ही करो आप, इससे तो फिर हम हमारा जो तरीक है वो ज्यादा बेहतर है इससे। बाल हमारी नजर में ये बड़ा मसला नहीं है। मैंने जिंदगी 30 साल शाफियों के साथ गुजारी है, वो सब करते थे, हमने तो आज तक कभी नहीं उनको छेड़ा ना उन्होंने हमें छेड़ा। मैंने अपने वाले साहब से जाके पूछा, अब्बू ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा बेटा ये भी सही है, इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, उनकी तहकीक है कि करना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा, अब्बा ने कहा हम इमाम हनीफा को फॉलो करते हैं, उनकी तहकीक है नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अब्बू सही कौन सा? अब्बू ने कहा दोनों ठीक है, एक को फॉलो करना चाहिए। मेरे वाले साहब ने एक दफा में बता दिया, तो वो जो होता है ना जिसको इंग्लिश में इंसेंट कहते हैं, उर्दू में जो चीज कहते हैं मिंबर पे मुनासिब नहीं है, इंसेक्ट कहते हैं ना, सॉरी, जो मैं अपनी मुर्गियों को खिलाता हूं, इंसेक्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो जो मैं अपनी मुर्गियों को खिलाता हूं, तो अब्बा ने जब एक दफा कहा तो दोबारा इंसेक्ट पैदा नहीं हुए। लेकिन जिनको अब्बा ने समझाया नहीं बचपन में, उनको ऐसा इंसेक्ट, अभी इंग्लिश मस्जिद में नहीं, कीड़ा बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको ऐसा इंसेक्ट हुआ है ना कि उनका ईमान और कुफर का मसला ही ये बन गया है, वो ईमान और कुफर का मसला ही ये बन गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे इतने परेशान हुए थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने टीवी पे नमाज सिखाना ही छोड़ दिया। मेरी बराह रास्त उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने पहले ये वाली की कि चलो इस तरह, तो जो हनफियों को एतराज होना शुरू हो गया, ये क्या भाई, फिर दलाइल देना, कह रहे मैंने फिर इसके बगैर किया तो वो अहले हदीसों को एतराज, ये तो तुम कुरान और सुन्नत के खिलाफ कह रहे। मैंने कहा नमाज ही नहीं सिखाऊंगा, जाओ। ये मैं अपने अल्फाज में डॉक्टर साहब की बात नकल कर रहा हूं, यानी खुलासा उसका यही है कि नमाज ही नहीं सिखाओ, जाओ। बेचारे क्या करते हैं यार, रफुल दैन से सिखा रहे हैं तो उधर मुतनाज़े बन रहे। उसूली तौर पर यह होना चाहिए, अरब के जो सलफी जो मोतदिल उलमा है ना, उनके यूट्यूब पे क्लिप पड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जिस मुल्क में चारों मजाहिब में से जो फिका राइज हो, चारों मजाहिब इसलिए कि ये अहले सुन्नत वल जमात के हैं, ऐसा ना हो कि आप फिर वो पूरा ही इतना ब्रॉड माइंडेड बन जाएं, तो क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात के हैं चारों मकातिब फिक्र, इनका इस्तदलाल कुरान और हदीस से होता है। तो एक अरब आलिम का फतवा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे अरब उलमा के हैं, सऊदीया के उलमा, वो कहते हैं कि भाई जिस मुल्क में जो फिका राइज हो तो लोगों को उसी के हिसाब से नमाज सिखानी चाहिए, क्योंकि चारों अहले सुन्नत वाल जमात के मकातिब फिक्र हैं। आप डेढ़ इंट की अलग चीज ना सिखाएं आप, उससे क्या होगा, लोगों में वहशत पैदा होगी, इख्तलाफ पैदा हो। मैंने अरब को देखा है, हमारे यहां आया करते थे जामेतुर रशीद में, वो तो रफुल इदैन के बगैर नमाज पढ़ रहे होते थे। एक दफा मैंने अरबी से पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार सब यहां बगैर रफुल इदैन के कर रहे हैं, तो कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, तो क्यों मैं अलग से एक नमाज कायम करूं। तो हमारे हजरत ने उनको बुला के स्पेशल समझाया, बोला आप कर लिया करो, यहां आपको कोई टेढ़ी निगाह से नहीं देखेगा। तो ये भी तो एक तरीका है। तो आप खाम खाम एक डेढ़ इंच की अलग, और उस पर इतनी शिद्दत, इतना इख्तलाफ, इतना उस पर, मस्जिदों में बाज लोगों की मस्जिदों में जाओ तो यही झगड़े नजर आएंगे आपको, रफुल इदैन पर 36 हदीसें, 38 हदीसें, जोर से आमीन पर 35 हदीसें। मस्जिद में जाओ ना, तो मैं एक मस्जिद में गया, जाते ही पंफलेट लगे हुए हैं, बजाय आदमी नमाज पढ़ने के बस यूं ही देख रहा होता है 36 35। हालांकि इतनी हदीसें होती नहीं है। बाज लोगों ने ये खयानत की है कि तकबीर तहरीमा वाला रफुल इदैन को भी रफुल इदैन की हदीसों में शामिल कर लिया है, उसको भी रफुल इदैन की हदीसों में शामिल किया है। और बाज लोगों ने यह भी गड़बड़ की है कि इमाम बुखारी की जो सही है, बुखारी के अलावा किताबें हैं उनमें अगर रफुल इदैन की हदीस आई है तो उसको भी कहते हैं रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने बयान किया, तो लोग कहते हैं बुखारी में बयान किया, हालांकि वो बुखारी में नहीं होती। इमाम बुखारी के सिर्फ सही बुखारी की हदीसें सही हैं, बाकी हदीसों में तो सही भी होती हैं और ज़ईफ भी होती हैं, लेकिन वो रवाहुल बुखारी लिखा हुआ होता है। अवाम धोखे में आती है कि जुज़ रफ़ील यदैन लिल बुखारी के अक्सर हवाले दिए जाते हैं, वो सही बुखारी थोड़ी है जुज़ रफ़ील यदैन लिल बुखारी, वो तो इमाम बुखारी का एक अलग रिसाला है, जैसे अदबुल मुफ़रद एक अलग रिसाला है, उसमें ज़ईफ हदीसें भी हैं। तो बस फेंके जाओ, पब्लिक बैठी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं आज के स्कॉलर को अगर सुनोगे ना तो पागल होने के अलावा कुछ भी हासिल, धक्के खा के या तो मुर्ता तो जाओगे या कोई नया फिरका बनाओगे। इसलिए आप कहते हो फिर हम, आप भी तो आज के स्कॉलर्स हैं ना, आज के स्कॉलर्स में आते हैं हम, आपको क्यों, मैं आपको कोई नई चीज नहीं लेकर आ रहा, मैं आपको असलाफ से क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। मैं कहता हूं उन्हीं अइमा अरबा में से किसी को फॉलो करो आप। तभी मैंने कोई ऐसी नई राय नहीं लेकर आया, चार शादियां भी मेरी अपनी राय थोड़ी है, कुछ सदियों से चली आ रही है। तो आजकल के स्कॉलर नई नई चीजें मार्केट में ला रहे हैं और लेबल ये लगाते हैं हम आपको असलाफ की तरफ बुला रहे हैं, हालांकि वो असलाफ को तो चारों इमामों ने जैसा समझा है ऐसा किसी ने नहीं समझा। और चार इमाम इसलिए कि उनका फिका मुदव्वन है, मुरत्तब है, रिटर्न फॉर्म में है, सदियों से उस पर अमल हो रहा है। तो जो सदियों से जिस पर अमल तवातुर के साथ चला आ रहा हो, हुकूमतें उस पर चली हों, वो ज्यादा रिलायबल है भाई। वो एक ऐसा थोड़ी नया इस्लाम आज नया नया आया है। तो अगर आपने फिर भी रफुल दैन करना है तो करें आप, लेकिन पूरे शाफी बन जाएं आप, प्रॉपर शाफी फिका को फॉलो करें आप। लंदन से अभी एक आलिम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब हमारे यहां लंदन में ये मसला बहुत चला था, तकलीद, अदम तकलीद और ये फलाना ढिमकाना, इतनी इस पे मसाइल खड़े हुए, लेकिन शुक्र है कुछ मजहबी स्कॉलर्स को अल्लाह ने कुछ समझ अता कर दी। तो उन्होंने फिर खुद ही ये फतवा दिया कि भाई जिसने रफुल दैन करना है तो पूरा फिकह हम्बली को फॉलो करे वो, क्योंकि वो सऊदी को फॉलो कर रहे थे ना, सऊदी उलमा को। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग या तो हम्बली हो गए हैं प्रॉपर फिकह हम्बली को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत से हनफी हो गए हैं। तो ये किसी हद तक ये फितना क्या हो गया, खत्म। तो हमने कहा ठीक है, अगर फिकह हनफी पसंद नहीं है तो फिकह हम्बली को फॉलो करो, प्रॉपर वे में फॉलो करो। ये नहीं होता कि जी आपका मुझे हदीस से ये समझ में आ रहा है, उसको कुछ और समझ में आ रहा है, उसको कुछ और समझ में आ रहा है। ये दीन है, चूचू का मुरब्बा थोड़ी है यार। ये तलाक में ही देख लो, अभी एक साहब ने, मैंने बताया ना जापान में तलाक दिया, पता क्या किया उन्होंने, अभी मैंने बयान में भी बताया था ना, बाकायदा खुदकुशी करने जा रहे हैं। सब जापान में खुदकुशियां बहुत हैं, तो मुसलमान भी उनको देख के बड़े इंस्पायर हो रहे हैं ना कि माशाल्लाह कितना अच्छा लगा। तो वो मुस्लिम है, उसने इरादा किया चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो वो जापानी तो तलाक दिए बगैर ही खुदकुशी कर लेता है। इन्होंने क्या कहा कि अब मैं सच्ची मुच्ची की खुदकुशी कर रहा हूं तो बीवी को पहले तलाक दो। तो बीवी को बाकायदा नीयत करके तीन तलाकें दी हैं कि अब मर ही रहा हूं तो पहले इससे जान छुड़ाओ। मरा, लोगों ने बचा लिया। समझ रहे, जिंदा निकल के बाहर आ गया। और खुदकुशी करने वाला एक दफा बच जाए ना तो उसको अंदाजा हो जाता है भाई मौत हल्की चीज, वो दोबारा ही हमाकत नहीं करता। लोगों ने बचा लिया उसको, उसको ख्याल हो यार ये मैंने क्या करूंगा। जब गोते लगते हैं, फिरौन की भी खोपड़ी सेट हो गई थी ना एक गोते में, फौरन कहने लगा अल्लाह पे ईमान ले आया, तो ये भी फौरन खोपड़ी इसकी क्या हो गई यार, ये तो करने का काम नहीं। ये लोगों ने बचा लिया, बाहर आया तो अब बीवी तो गई हाथ से, अब परेशान फिर रहा है, फतवे लेता फिर रहा है। तो हालत हैज में तीन तलाकें दी थी, तो कहीं से फतवा लेकर आ गया कि हालत हैज में तलाक वाकई नहीं, एक भी नहीं हुई है। मेरे से उनके रिलेटिव ने रابطہ किया, मैंने कहा इसका बायकॉट करो कमबख्त का, बोलो तू मर जाता ये ज्यादा अच्छा, तो शरीयत का मजाक क्यों उड़ा रहा है तू। तो तमाशा बनाया हुआ भाई, स्कॉलर आपको हर तरह के मार्केट में मिल जाएंगे। तो मिल वो कोई उसका वो नहीं, जब तक आप पाबंद नहीं होंगे। चारों फिका में है कि हालत हैज में भी तलाक वाकई होती है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी रिसर्च करके फिका को मुरतब किया है। आज का स्कॉलर आएगा नई रिसर्च शुरू कर रहा होगा अवाम को, वो कहता है तकलीफ तो करनी नहीं हमने किसी भी आलिम की, तो वो फिर नई रिसर्च तो दोबारा से आप जो जीरो से शुरू करेंगे तो यही हशर होगा। फिर वही लंबा में मैंने पर्ची, वो शुक्रिया आपने खाम खामी अदा कर दिया था मेरा। एक बड़े गाँव तबलीग की मुख्तसर ये है कि मैंने कहा कि मैं नमाज तो पढ़ लूंगा लेकिन वुजू नहीं कर सकता, तो आलिम ने कहा चलो बगैर वुजू के पढ़ लिया करो नमाज, फिर तन्हाई में अल्लाह से माफी मांगना, ये गलत मसला बताया तो तीन में लाने के लिए क्या ये जायज होगा। यार बाज दफा वो उनको पता होता है बगैर वुजू के नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही कह रहे होते हैं चल बगैर वुजू के पढ़ ले, उनको पता होता है कि नहीं पड़ेगा बगैर वुजू के, तो उसमें भी एकदम आलिम पे जल्दबाजी में फतवा नहीं लगाया जा सकता कि काफिर हो गए बगैर वुजू के नमाजें पढ़ा रहे हैं। अब वो क्या कंडीशन थी उस बंदे की, क्या हालत थी, हमें क्या पता। वैसे बगैर वुजू के नमाज का किसी को मशवरा देना जायज नहीं है, लेकिन बाज दफा पता होता है कि ये नहीं करेगा ये काम। बहुत अहम सवाल है, पूरा पढ़ें। आप उलमा पर एतराज ये है कि आप लोग हक बात को छुपाते हैं, डरते हैं बयान करने से कि इससे अवाम आपको अहले सुन्नत से निकाल देगी, कबूल नहीं करेगी। दो तीन बातें अर्ज करनी है। आपका एक क्लिप देखा जिसमें आपने जवाब दिया हजरत अम्मार बिन यासिर को हजरत मुआविया के लश्कर ने कत्ल नहीं किया बल्कि बागियों ने किया, जबकि ये बात गलत है। मुस्तदर के हाकिम की हदीस नंबर 5660 में है कि हजरत मुआविया ने कहा था कि हम अम्मार को क्या हमने कत्ल किया, इनको अली ने कत्ल करवाया है क्योंकि उन्होंने ही इनको लाकर हमारे नेजों का निशाना बनाया है। अब इसका क्या मतलब है, हक क्यों बयान नहीं करते उलमा। इसका मैं उसी क्लिप में जवाब दे चुका हूं, हजरत मुआविया ने ये फरमाया था और उसका क्या मतलब है, ये आप पूरा क्लिप सुन लें। اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے, تو حق بیان کرتے ہیں. تبھی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے. حضرت میری آپ سے گزر, پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے, عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے, تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں, پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں, ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا جائز نہیں ہے, ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے, اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا, اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں. تو امام بخاری بھی غلط, امام مسلم بھی غلط, امام ترمذی بھی غلط, امام ابو داؤد بھی غلط, امام نسائی بھی غلط, یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیٹ رہے تھے. تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے, پھر یہ بولو آپ, پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہو تو ہم آپ کو, آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ, آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں ہم کو انہی کا جواب دے دیں گے, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں؟ میں نے بار بار مثال دی ہے کہ ایک عدالت میں ایک شخص کیس کرتا ہے جج کے سامنے کہ جج صاحب اس نے مسجد سے میری چپل چرائی ہے, یوں کہتا ہے جج صاحب یہ آدمی بڑی ہوشیاری سے آیا, اس کو پتا تھا یہ چپل میری ہے, خفیہ طریقے سے اپنے تھیلے میں ڈال کے لے گیا, لہذا اس پہ کیس کریں. جج کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے چپل چوری کی ہے اور یہ چور ہے؟ نہیں جج صاحب, یہ چور نہیں ہے, اس نے چپل چوری نہیں کی ہے, چوری کرتا تو میں اس کو چور کہتا, چوری نہیں کی ہے اور یہ چور بھی نہیں ہے, بہت نیک آدمی ہے, رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ بہت نیک ہے, یہ جب بھی کوئی بیان دے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا, ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے, اس کی حدیث بخاری میں بھی آئے گی جس کا معیار سب سے اونچا ہے صحت میں, اتنی اوتھینٹک کتاب ہے, اس میں بھی یہ کوئی بات نقل کرے گا تو لی جائے گی اس کی حدیث. جج کہے گا اس کا مطلب اس نے چپل چوری نہیں کی؟ جج صاحب میں کب کہہ رہا ہوں چوری کی, میرا دعویٰ تو سمجھیں, یہ آیا چپکے سے یوں کر کے وہاں سے ٹن مارا, یوں چپل اٹھائی تھیلے میں ڈال کے بھاگ گیا اور مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دی. جج کہے گا اس کا مطلب چوری کی ہے نا؟ جج صاحب چوری نہیں کی, رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ, یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جب یہ پیغمبر کی نسبت کر کے بھی کوئی بات بیان کرے اس کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا اور بالکل مستند بات ہوگی, اس کی بیس پہ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے, یہی سمجھا جائے گا قول رسول ہی بیان کر رہا, اتنا نیک ہے. جج پھر سوال دہرائے گا, اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے؟ نہیں چور تو نہیں ہے, تو اس کا مطلب پھر اس نے چپل نہیں چرائی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چرائی ہے, چپل لی کس نے, یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ اس نے. جج تھپڑ لگا کے بولے گا تو تیرے اوپر تو ڈپریشن کا مریض ہے یا تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہے؟ تین سے چار دفعہ جج چیلنج سنے گا, اس کے بعد پولیس والوں کو بولے گا اس کو اٹھا کے یا تو توہین عدالت کا کیس چلا, اس کو بند کرو اس کو, یا اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجو. تو میں بھی جہلم والی سرکار سے کہتا ہوں کہ تم حضرت معاویہ پہ رضی اللہ, تم چوری سے بڑا الزام لگا رہے ہو, مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے, اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا, اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف, اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے, بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی, حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنائے, آپ بنے, باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف قتل کر دیا, مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل. جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان, آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں, کوئی اس وقت سلو صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو, میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا, ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سر پھرے بھی ہیں نیک بھی ہیں, तो ऐसे मौके पे कोई सरफिरा उठ के उसको मार दे तो आप क्या कहेंगे, भाई हम तो मना कर रहे थे ना कि ये इस मौके पे ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपने किया है तो अब इसके जिम्मेदार भी कौन हो गए, आप हो गए। तो ऐसे मौके पे अपनी जान बचाने के लिए ये अल्फाज कहे जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हजरत मुआविया भी उनके कत्ल पे खुश नहीं थे, तो वो उसको जरिया करार दे रहे थे कि हजरत अली से उनका एक सियासी इख्तलाफ था कि ऐसे मौके पे आपको ये करना ही नहीं चाहिए था। फिर भी हम कहते हैं कि इसमें हजरत मुआविया इश्तिहादी गलती पर थे, हजरत हक अली के साथ था। लेकिन गलतियों की दो किस्में होती हैं, आप इन किस्मों को मानते हो कि नहीं मानते? किस्में होती हैं गलतियों की, एक गलती वो होती है जिसकी कोई तावील नहीं होती, एक गलती वो होती है जिसमें गलती की तावील की जा सकती है। खुद झेलम वाली सरकार ने भी तो कितने लोगों की गलतियों में तावीलात बयान की हैं। तो सियासी इख्तलाफ था, इश्तिहादी गलती थी, और अगर नहीं थी आप उस दावे पर मजबूती से कायम रहो। शिया कहते हैं हजरत मुआविया की हदीस लेना जायज, बोलो नहीं है, वो खुलेआम फासिक कहते हैं। आप उधर से भी पेड़े खा रहे हो, इधर से भी पेड़े खा रहे हो। तो शियों के साथ जब हमारी बहस होगी हम अलग बात करेंगे उनके साथ। आप अपने आप को अहले सुन्नत वाल जमात में कहते हो, अब रजी अल्लाह तआला अन्हु लगा रहे हो, आप बुखारी में उनकी हदीसें भी मानते हो। शिया तो इमाम बुखारी को नहीं मानता, वो तो साफ कह देंगे कि भाई इमाम बुखारी ने हजरत मुआविया की हदीसें लेके गलत किया है, वो हदीस काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन इंजीनियर साहब आप ये नहीं कह रहे, क्योंकि आप उधर से भी पेड़े खाना चाहते हो अहले सुन्नत वाल जमात के पेड़े भी, और आप शियों से भी हजरत मुआविया को बुरा कहकर पेड़े खाना चाहते हो। तो आपका ये पूरी अकेडमी है लड्डू और पेड़ों की दुकान है। किसी एक दावे पे टिकोगे तो फिर हम आपको जवाब देंगे। यही चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह के बारे में भी हम कहते हैं कि आप चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहते हो कि नहीं कहते? फिर अगर मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहते हो तो जो उनको मुसलमान मानते हैं फिर उनको भी काफिर कहो। मैं तो मुसलमान मानता हूं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, बल्कि मैं तो ये चारों तसव्वुफ के सलासे लें, इनमें मुझे इजाजत बैत मिली है, उनमें एक मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला भी है, तो उनको मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आप मुझे तो कहते हो कि उनको बुजुर्ग मानते हो, क्यों? मैं उनको, अगर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ये कलमा पढ़ाया है, या तो मैं ये मानूंगा ही नहीं ना कलमा पढ़ाया है, आपकी मैं बात का जवाब भी नहीं दे रहा, तो आप फिर फतवा लगाओ कि मुफ्ती तारिक मसूद दार इस्लाम से खारिज, कि जिस शख्स ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया मुफ्ती तारिक मसूद उसको भी क्या मान रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि बुजुर्ग। लेकिन अगर आप कोई तावील करते हो कि नहीं मुफ्ती साहब को मैं काफिर इसलिए नहीं करार देता कि चिश्ती रसूलुल्लाह का ये मतलब भी बन सकता है, ये मतलब भी बन सकता है, तो फिर वो मतलब आप मुंह से फूटो ना। फूटते क्यों नहीं हो, चुप क्यों बैठे हुए हो? तो एक दावा तो करो, आप बोलो मुफ्ती तारिक मसूद काफिर है, मौलाना शलभी थानवी रहमतुल्लाह माज अल्लाह काफिर थे, उनको जो मुसलमान माने वो भी क्या है, काफिर है। फिर मैं आपका जवाब दूंगा कि भाई काफिर नहीं हूं। क्यों? अशरफ अली थानवी ने जो कलमा पढ़ाया उसका क्या मतलब, जो आप दावा करते हो, और चिश्ती रसूलुल्लाह के जो आप दावा करते हो वो दावा सही है भी या नहीं है, इससे भी बहस करूंगा, और अगर सही है तो उसका मतलब क्या, इससे भी बहस करूंगा। लेकिन तुम कमबख्त, तुम जज का टाइम जाया कर रहे हो, तुम सिर्फ उम्मत में एक लड़ाई पैदा कर रहे हो, किसी एक दावे पे तुम टिकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब तुम उधर से भी लड्डू, बरेलवियों से भी लड्डू खा रहे हो कि उनको काफिर नहीं कह रहे, ठीक है ना, और उधर से भी लड्डू खा रहे हो तुम के जो लिबरल सेकुलर किस्म के लोग हैं और समझते हैं कि बड़े तौहीद परस्त हो आप, तो उधर से भी लड्डू खा रहे हो कि मैं किसी को काफिर नहीं कहता। तो अजीब किस्म का आपने चूचू का, तभी तो मैंने एक बयान में कहा था आप चूचू का मुरब्बा हो, किसी की जगह टिकते ही नहीं हो आप। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं ये मिर्जा से कि आप सीधा सीधा दावा कर दो हजरत मुआविया क्या थे, कत्ल भी करे अम्मार इब्ने यासिर के कातिल भी हों, हजरत अली के खिलाफ तलवार भी उठाएं और इश्तिहादी गलती पर भी ना हो, जानकर कर रहे हैं सब कुछ, गालियां भी माज अल्लाह दिलवाते हैं मिंबरों पे, तो फिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बनता नहीं है। फिर तो माज अल्लाह नकल कुफर लानतुल्लाही अलैहि का लफ्ज भी हल्का है, माज अल्लाह नकल कुफर। हम तो हजरत मुआविया से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, तो फिर ये लफ्ज भी भाई, फिर आप फिर खुल के बात करो, ये दो नंबरी छोड़ दो। मुझे कह रहा है डरपोक, तहरीक लब्बैक वालों से डर गया, मुझे कह रहे हैं बार बार ना डरपोक, आप कोई और मुझे डरपोक कहे ना मुझे उसका बनता है हक, हो सकता है मैं डर गया हूं, हो सकता है ना भी डरा हूं। आप पर तो बिल्कुल भी ये लफ्ज सूट नहीं करता, मैं बगैर तलवार के, बगैर गुलेल के, बगैर जूतों चप्पलों के, दो चार कराची के लौंडे लपाड़े पतले पतले से, ऐसे बारीक बारीक से जो पहली दफा कराची से बाहर निकले और इतने सीधे कि मैं जब हैदराबाद पहुंचा ना, हम लोग जब हैदराबाद एक दफा पंजाब जा रहे थे दोबारा सफर में, या उसी वही सफर था मुझे याद नहीं, तो वो हैदराबाद की तरफ देख के कह रहे ये लाहौर है। उनमें एक लड़का, मैंने कहा ये लाहौर है और आगे फिलिस्तीन की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने तो फिर एंजॉय किया, मैंने कहा तफरी है भाई ये फुल। इन लड़कों को आपने कह दिया गुंडे आए थे लड़ने के लिए और 48 घंटे आपको मैं चैलेंज करता रहा, बुजदिल मैं होता तो मैं आपके शहर में आके इस तरह से आपको ना ललकारता। 48 आवर्स में भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं आपकी शर्त पे भी आमादा हो गया, मोहन्नत पे ही बात होगी, हजरत मुआविया पे और मोहन्नत पे बात होगी, चलो फरोई बात नहीं होगी, इसी पे होगी। वो भी नहीं आपसे हुआ और आप क्या कह रहे हो, डर गए। तो ये कोई और कहे, आप बोलते बिल्कुल भी आप पे ये अच्छा बोलो नहीं लगता, ये आप पे सूट नहीं करता कि डर गए। तो क्या करें यार, अब ये टॉपिक हम तो इंजीनियर का खत्म कर देते हैं, फिर उसी को थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंसेक्ट टाइप की कुछ चीजें शुरू हो जाती हैं। अच्छा मेरे भाई, गुजारिश है आपके, माशाल्लाह बहुत क्या लिखा है, सब्सक्राइबर हैं और बहुत लोग आपको सुनते हैं, तो बराए मेरे में अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पूरी सीरीज रिकॉर्ड करवा कर देखो। हम अभी तफसीर के चैनल पे मेरी तफसीर चल रही है ना, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, इस चैनल पे मैंने पूरा कुरान वीडियो रिकॉर्डिंग में किया है, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने पूरा कुरान इस तरह से रिकॉर्ड करवाए, टू द पॉइंट आए थे। तो ना इंग्लिश में है ना अरबी में मिल रहा है कहीं, ना उर्दू में, तो पहला ये होगा। ये बहुत बड़ा अल्लाह ने काम लिया, 2019 से मैंने शुरू किया था, 450 से ज्यादा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड होके अपलोड हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ पहले ये खत्म हो जाए, फिर हम एक काम तो कंप्लीट हो ना, फिर हम इंशाल्लाह सीरत पे और इन सीरीज पे भी काम करेंगे। अच्छा भाई ये कौन, इन्हें बड़ा लंबा सवाल है यार, मेरी गुजारिश है सवाल यूट्यूब चैनल के मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, आस मुफ्ती तारिक मसूद और मुफ्ती तारिक मसूद व्लॉग के अलावा क्या भाई, मेरे तीन चैनल हैं बस, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, आस मुफ्ती तारिक मसूद। ये स्पीचेस जो है ये बयानात के लिए है, और आस मुफ्ती तारिक मसूद सिर्फ और सिर्फ मसाइल के लिए, रोजमर्रा के मसाइल, उसमें किसी ने कोई भी मसला हो ना तो उस पर सर्च करें, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। और तीसरा जो व्लॉग वाला है वो एक मजबूरी से बनाया मैंने। वो मजबूरी क्या है, मेरे दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं सफर, समझते हो, तो मुझे वीजों में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। अच्छा मैं वैसे ही, मुझे व्लॉगिंग तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, जब मेरा चैनल भी नहीं था। मैं तुर्की जब गया तो मेरा तो मुझे नहीं याद पड़ता मेरा कोई चैनल था भी, तो वो लंगड़ा लूला सा चैनल था कोई, और सबको इजाजत भी थी। तो तुर्की गया मैंने, वहां व्लॉगिंग की, यानी लोगों को, उस वक्त व्लॉगिंग मशहूर ही नहीं थी। मुझे लोग कहते हैं मैंने लोगों को देख देख के व्लॉगिंग करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त व्लॉगिंग की है जब ये व्लॉगिंग के लफ्ज से मैं खुद भी आशना नहीं था, सही है ना, कि व्लॉगिंग क्या होती है। वैसे ही मुझे शौक था कि यार कोई मुफीद चीज है तो लोगों के साथ शेयर की जाए। तुर्की में 2014 या 15 के हैं वो, जो मैंने वहां की दीवार दिखाई और लोगों को अवेयर किया, तो उसमें सिर्फ एक हिस्ट्री लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो उससे भी पहले से मैं ये काम कर रहा था ताकि लोगों को कोई भी मुफीद मालूमात मिलती है तो वो मिले। तो ये कोई मेरा ये नहीं था कि पैसे कमाने के लिए मैंने ये कोई काम शुरू किया हो। तो बाद में हमें जरूरत पड़ी है अपना व्लॉगिंग के अलग चैनल बनाने की, क्योंकि ट्रैवलिंग जो होती है ना उसमें वीजों में बड़ी मुश्किलात हो रही थी। और दूसरा ये स्पीचेस पे लोग सिर्फ मजहबी बातें सुनने के लिए आते हैं, इस पे लोड बहुत हो रहा था, इतवार और जुम्मे के बयान, फिर उसके शॉर्ट क्लिप, उसी में व्लॉग भी आए तो वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। फिर व्लॉग की एक बिल्कुल ही नेचर अलग होती है, और फिर व्लॉगिंग का चैनल मजहबी चैनल से ज्यादा मजबूत होता है, समझते हैं कि नहीं समझते, वो मजबूत ज्यादा होता है, उसके उड़ने के इम्कान, स्पीचेस तो दो दफा उड़ चुका है हमारा, फिर वो पकड़ के लाए दोबारा अहमद भाई, ठीक है ना। तो व्लॉगिंग में ये था कि भाई ये खालिसतन मजहबी चैनल नहीं होगा, तो उसमें ट्रैवलिंग में आसानी, उसकी बेस पे आपको वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। कहीं भी दुनिया में जाओ आप, कोई भी, मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, मैं आपके कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो उस एक्सप्लोर में वो खुश होते हैं मुल्क वाले के, यार अच्छा है हमारे कंट्री को एक बड़ा यूट्यूबर है, बहुत इसके फैन फॉलोइंग है, तो अच्छा है हमारी पॉजिटिव चीजें, तो हम वो अपने मतलब में कर रहे होते हैं, हम अपना मतलब उससे कि भाई जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम दुनिया को क्या कर दें, दिखा दें। तभी मैं जापान गया, मैंने वहां की कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर मैं वहां नेगेटिव दिखा देता तो जापान वाले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, वो फिर जो है ना थोड़ी वो तो निकाल बाहर करते कोई भी मुल्क। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये फैसिलिटी है कि कोई अच्छी चीज दुनिया को ना दिखाओ, सारा गंद दिखाओ दुनिया को। ये हमारी कौम को अल्लाह ने ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक सोच दी है कि अपना सब नेगेटिव फेसबुक पे डाला करो, पॉजिटिव कुछ भी मत डालो। अगर आपको नजर आए ना कोई जवान आदमी किसी बूढ़ी औरत की खिदमत करते हुए बोरी पे सामान लाद के उसके घर पहुंचा रहा है, तो कोई भी नहीं इसको अप्रिशिएट कर रहा, सारा उल्टा, सारे उल्टी चीजें, चाहे वो फौज की हो, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे फजलुर रहमान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे वो और कौन कौन रह गए पीपल्स पार्टी की हो, सबकी नेगेटिव को दबा के प्रोमोट करो, पॉजिटिव किसी का भी सोसाइटी में मत लेकर आओ। कोई तेजाब फेंकने का वाकया होगा दबा के शेयर करो, किसी औरत को जान बचाने का वाकया होगा वो इतना शेयर नहीं होता। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सहूलत दी है, यूरोप अमेरिका में जापान में ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा कोई खड्डा तुमने दिखाया ना, तुम्हारे जिस्म में इतने खड्डे डालेंगे तो वहां जाके तभी फिर मैं देखें इतना अच्छा सब अच्छा अच्छा, तो जो अच्छा होता है वो दिखा रहा होता हूं। लोग कहते हैं ये तो बदल गए यहां, तो मैंने वहां जाके ओल्ड हाउस भी, ये ऐसे नहीं है ओल्ड हाउस जैसे नजर आ रहे हैं आपको, ओल्ड हाउस की हालत बहुत खराब है वहां पे। अभी क्या बोलूं, जापान के ओल्ड हाउस अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने ओल्ड हाउस नहीं दिखा है। क्यों? वो मुझे ओल्ड हाउस में जमा करा रहे, बोलते तू भी यही रहेगा। तो वहां जाके फिर मैं अच्छा अच्छा, तो उसमें उनका भी फायदा है, हम भी जो काम की अच्छी चीजें भी तो है ना, सारी बुरी थोड़ी है, बहुत सी अच्छी चीजें आपने जापान की देखी होंगी, तो उससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है, यार ये कितना अच्छा है, लाइन में लोग चल रहे हैं, और वो कच्ची मच्छी कितना अच्छा नाम है, होता ना शहर का नाम, और उसके अंदर फैमिली देखी, सारे जापानी बच्चे इतने अच्छे अच्छे से, सबकी एक लगता है एक ही माँ बाप की औलाद है, सबकी शक्लें चाइना और जापान वालों की एक जैसे। हमारे यहाँ स्टाइल देखो, एक काला होगा, एक बिल्कुल व्हाइट, एक ऐसा होगा अंधेरे में नजर ही नहीं आएगा, दूसरा पड़ोस में रह रहा होगा वो रोशनी में नजर नहीं आएगा, इतना गोरा होगा। एक के दांत नीले, एक के सफेद, एक के पीले, एक के सर पे बाल नहीं है, एक के बाल ही बाल है, हर जगह जहां नहीं होने चाहिए वहां भी बाल है उसके। हमारे यहां इतनी डिफरेंट किस्म की इंसानों में एक एक तोंद लेके आ रहा होगा, एक नजर ही नहीं आ रहा होगा आपको, इतना बारीक। उन मुल्कों में ऐसा नहीं है, सारे तकरीबन एक ही डिजाइन के होते हैं। तो मैं तो वहां जाके कहता था ये सब एक माँ बाप की औलाद है, हमारे यहां भाई बहुत कल्चर है यार, डिफरेंट लोग हैं, जमाने। तो ये मेरा व्लॉग वाला चैनल इसलिए बना है, ठीक है। तो अब उस पर जाहिर है मैं ये अब भिंडी विंडी जो दिखा रहा हूं, अब ये कोई प्रोफेशनल व्लॉगर ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, पहले दिन भी भिंडी, दूसरे दिन भी भिंडी, तीसरे दिन भी। और हमारे जो एडिटर, एक मिनट, एडिटर क्या कर रहे हैं, मैंने भिंडी यूं किए तो मेरी तस्वीर आई हुई है भिंडी की ना, यूं करके उसको मैंने हटवाई, मैंने कहा ये क्या कर रहा है यार, वो देखा एडिटर ने क्या किया, पहले दिन अजीब सी तस्वीर आ रही है भिंडी, यार हम ये क्या गला रहे हैं ना, दो दिन तक वो चलती रही, मैंने दो दिन बाद देखी, मैंने कहा ये क्या है सर, किसी ने कहा ये लगता है ईरान के मिसाइल रखे हुए हैं इसराइल पे चलाने के लिए मैंने वो हटवाई यार। तो प्रोफेशनल व्लॉगर ऐसे नहीं होते ना, उनकी यूं वो बड़ा खानदानी तरीके से व्लॉगिंग होती है। तो हम जो व्लॉगिंग कर रहे हैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप लोगों को, बाकी चैनल से अगर कोई आमदन आ जाए तो उस पर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, चलो मौली साहब भी पैसे खा लें तो क्या जा रहा है इसमें। लेकिन हमारी जो मकसद होता है वो लोगों को अवेयर करना है, फ्री फोकड़ के आ रहे हैं तो आने, तो उसमें क्या जा रहा है। और मेरे पास डायरेक्ट आते भी नहीं है, मुझे तो अभी तक व्लॉगिंग का पता ही नहीं इसके पैसे कितने हैं, सही है ना, मुझे अभी तक नहीं पता, और कहां जा रहे हैं, ये एडमिन के पास जा रहे हैं बस इतना पता है, मेरे पास मुझे नहीं याद पड़ता इसका एक रुपया भी आया हो। अब आप कहा एडमिन खा रहा है, वो खा नहीं रहा, वो कहीं मुलाजमीन पे बेचारा खर्च कर रहा होगा, जिसने यूं करके जो तस्वीर बनाई है मेरी उसको दे दी होंगे पैसे, बड़ा अच्छा। तो मैंने हंसवाया, मैंने कहा यार ये, मैंने कहा ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का इश्तिहार आया हुआ है, कोई नई फिल्म आने वाली है, तो प्रोफेशनल बेसिस पे थोड़ी काम हो रहा है। तो भिंडी मैंने तीन दिन क्यों दिखाई कि यार देखो छोटी सी मेहनत से इतनी पैदावार हो रही है भिंडी की, और चौथे दिन फिर भिंडी तैयार थी। हमारे गार्ड ने बोला भाई इसको रोको पौधों को, अब दोबारा तैयार है। तो मैंने कहा अब मैंने चौथे दिन बनाई ना तो फिर लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, मुफ्ती साहब कोई नफसियाती तो नहीं हो गए कहीं। लेकिन हकीकत है मेरा दिल चाह रहा था कि यार दोबारा बनाऊं कि तुम चार छह पौधे भी घर में लगा लो, अल्लाह की कसम इतनी बरकत होगी, पैसा भी बचेगा, ऑर्गेनिक सब्जी आपको खाने को मिलेगी। और इस ब्लॉग का असर कितना हुआ है, कितने लोगों की कॉल आई है कि हमने भी अपने घरों में सब्जी लगाना शुरू कर दी। तो यही तो हम चाह रहे थे कि यार कोई ढंग का काम करो यार तुम भी। तो अभी टमाटर निकलना शुरू हो गया, आज मेरा नीयत खराब हो रही थी कि टमाटर का ब्लॉग बनाऊं, लेकिन वो एक ही अभी पहला पका है ना, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा अभी कल मैंने अमरूद तोड़ा अपने दरख्त से, पहला अमरूद जो तैयार हुआ ना वो मैंने तोड़ा, पहला तैयार हुआ उस पर कपड़ा वपड़ा लगा के गाड़ी के उस पर रखा। मैंने कहा पहला निवाला मैं लूंगा, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। फिर बड़ी तमीज से उसको काटा, बड़ा मीठा बड़ा मजे का अमरूद था। अपने हाथ से पौधे लगाया करो, फल खाया करो, मजा ना आए पैसे वापस। इससे मेंटली भी इंसान सेहतमंद होता है, खुश रहता है। ऑर्गेनिक चीजें, अब ये जो भिंडी आप बाजार से खरीदो, कितने स्प्रे होते हैं भाई, कीड़े मार दवाओं की वजह से आप में कितने कीड़े पैदा हो चुके होते हैं इसकी वजह से। हर आदमी में है या नहीं? कोई दुनिया में ऐसा आदमी आपने देखा जिसको ना हो? सबको है ना। तो वो वजह यही है कि खुराकें क्या हो गई हमारी, बर्बाद हो। तो इतने मजे का सालन बनता है भिंडी का, जो ऑर्गेनिक भिंडी आप लगाओ, भिंडी नहीं तोरी भी लगाओ, कद्दू भी लगाओ। अब तो मैं और लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो है ना तरबूज, इसका जूस निकाला करो। और अल्लाह भला करे आपका ये चुकंदर, मैंने चुकंदर भी लगाया हुआ है। तो मैं तो चुकंदर खाता नहीं, लेकिन इसके बड़े फजाइल हैं। चुकंदर का जूस निकालो और थोड़ा सा चुकंदर का जूस और उसमें तरबूज का जूस और नींबू निचोड़ के डेली पिया करो। एंटी एजिंग समझते हो? एंटी एजिंग वो चीजें जो आपके बुढ़ापे को डिले करती हैं, रोक किसी का पाप भी नहीं सकता बुढ़ापे को, सही है ना? ये क्या कर देती हैं? डिले। तो आप ये तरबूज लगाओ और चुकंदर घर में लगाओ, नहीं होता तो बाजार से ही खरीद लो, इसका जूस निकालो, उसमें लेमन निचोड़ के पिया करो। ये बेहतरीन एंटी एजिंग। मैं नहीं पीता, सिर्फ मशवरे दे रहा हूं आपको कि आप चंद दिन पियो, फिर आप अपने चेहरे की रौनक देखो। इसमें बहुत आयरन होता है इसमें चुकंदर में, और तरबूज भी बहुत एंटी एजिंग, यानी वो जो बुढ़ापे को भगाने वाली चीजों में से है। तो क्योंकि वो गुदा हरेक को हजम नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा लींबू निचोड़ो, मजे का शरबत बनेगा। और बहुत ही खानदानी बनाना चाहते हो तो ये जो बंद गोभी है ना, फूल गोभी, पत्तों वाली गोभी जिसे कहते हैं, इसका भी थोड़ा सा जूस आधा कप निकाल के उसमें मिला दो, रियली पी लिया तो आप देखो चंद दिनों में आपके चेहरे पे कैसी, खवातीन तो खास तौर पे उनको तो ब्यूटी के लिए पूरे पूरे डब्बे खाली हो गए डिस्टेंपर के, क्रीमें लगा लगा के बेड़ा क्या कर दिया गर्क। तो उनको तो ब्यूटी के बकरी का दूध पिए ताजा। तो ये जो ब्यूटी के चक्कर में मुंह पे चीजें लगा लगा के कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हो ना, इससे कंपनियों को फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा। तो भाई बकरी पाल लो, ताजा दूध पिया करो बकरी का, इससे ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे पे फ्रेशनेस आती है इससे। ये चुकंदर शुकंदर के जूस थोड़ा पिया करो, ज्यादा नहीं पियो, पूरा गिलास निकाल के चुकंदर का जूस पी लिया ना तो जो चीजें नहीं भी मरनी चाहिए ज्यादा हो गई बस काफी। अब आप बताएं क्या पूछने, लाओ पर्चे दिए इन्होंने, बस आखिरी सवाल भाई फिर छुट्टी। क्या है, क्या वॉशरूम टॉयलेट में कपड़े रखने से रिस्क में कमी होती है, ऐसी कोई हदीस है? नहीं भाई, और कपड़े कहां रखें आप? जब आपने वॉशरूम में कपड़े उतारे तो क्या पेटी में रखने के लिए जाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर में कोई भी नहीं रखेगा। अगर औरत के पास अपना कोई माल नहीं तो क्या इसका हज उसका शौहर करवाएगा? अगर शौहर के पास इतना माल है कि सिर्फ वो खुद हज कर ले तो क्या इसे इंतजार करे और बीवी के लिए पैसे जमा करे? जब बीवी के पास पैसा नहीं है तो बीवी पे हज फर्ज नहीं है, तो शौहर अपना हज करके आ जाए, कोई हर्ज नहीं। और अगर पैसे मिलने की तवक्को है, शौहर थोड़ा बहुत हज डिले भी कर सकता है 2-4 साल, कि यार मैं अकेला करके आऊंगा तो मेरी बेगम रह जाएगी, तो थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूं, इतना पैसा आ जाएगा कि बेगम को भी करा लूंगा। तो कोई ऐसा बूढ़ा भी नहीं है कि मरने का, कराची वालों पर तो है कि उसी साल फर्ज है, क्योंकि डाकुओं का कोई भरोसा नहीं है। नॉर्मल इलाकों की बात कर रहा हूं, अगर जिंदगी की उम्मीद है तो इस वजह से थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, ज्यादा डिले ना करें क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है। तो कुछ डिले कर सकते हैं कि यार 2-4 साल के बाद बेगम को भी ले जाऊंगा, लेकिन शौहर पर फर्ज नहीं है कि बीबी को भी हज कराए, वो करा ले तो अच्छी बात है। और ये याद रखो, जो बीवी के साथ हज पे जाते हैं बहुत सवाब मिलता है, लेकिन वहां झगड़े बहुत होते हैं, घूम जाती है बीवी, फिर मिलने पर बहुत अफसोस होता है बाज लोगों को। आप एकदम सकते में आ गए थे ना कि यार ये तो खुशी की बात है घूम जाती, इसलिए मैंने कहा कि टेंशन अभी नहीं, टेंशन बाद में शुरू हो रही। तो खैर, लेकिन शरीफ लोगों को घूमने पे भी बहुत अफसोस होता है। तो बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं अरफात में, मुजदलिफा में, क्योंकि सब तवे पे बैठे हुए होते हैं टेंशन से। 5 दिन ना इहराम के बहुत टेंशन में होते हैं, जो 5 दिन होते हैं ना बहुत टेंशन होती है, तलाके तक हुई है वहां पे हज में, क्योंकि इतना बीवी घूम गई और तवाफ में गायब हो गई, तो बहुत होता है। तो इसलिए बेगम को जरूर लेकर जाएं, इससे बहुत सवाब मिलेगा, वो बेचारी बाद में किसके साथ जाएगी, लेकिन ये दिमाग में रख लें कि अपने जज्बात और अपनी जबान पे कंट्रोल करना है, गुस्सा यहां के निकाल देना, कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा होगा, आपकी खोपड़ी घूमेगी और आपका कभी दिल करेगा मैं इसके एक मुक्का लगा दूं, खींच के मैं ये कर दूं, लेकिन फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, अल्लाह ने कहा हज में झगड़ा नहीं है, किसी से भी नहीं है तो बीवी से भी नहीं, बस वहां जर बड़ा रखो, बेगम जो मर्दी उल्टा सीधा, बाज दफा खवातीन को बिचारियों को पता नहीं होता, वो तवाफ करते हुए कहीं शार्ट हो गई, अब आदमी कह रहा है भाई मेरे साथ साथ रहना, खवातीन को नहीं पता तजर्बा होता है ना, वो घूमते घूमते के मियां का परवा ही नहीं, अब मियां तलाश कर रहे हैं, सब बुरकों में एक जैसी होती है, नजर ही नहीं आ रही होती, अब वो ये थोड़ी पूछेगा जरा काइंडली, तो वो बड़े मसाइल होते हैं ये, बहुत ये वो वाकयात हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, इतना रश होता है, एक सेकंड लगता है गायब होने में, अब आप तवाफ करो या बीवी को तलाश करो, इतनी टेंशन है, दो दो घंटे लोग तलाश कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, क्या ये क्या हो गया, होटल गुम गया, और फिर वो अरफात में तो फिर पैदल चल चल के औरतें जल्दी थक जाती हैं, वो फिर गुस्से में होती है, आदमी कहते हैं एक तो तेरे को मैंने हज कराया, तुझे मैंने हज कराया, इतना पैसा खर्च किया, ऊपर से तू उससे तमीज से बात नहीं कर रही है, तो कहती है क्या हज करा के खरीद लिया है क्या, सब अपनी ये फड्डे चल रहे होते हैं वहां पे, तो आदमी कहते हैं गुम जाए। तो इसलिए बेगम को जरूर हज पे ले जाया करो, ये मैं सिर्फ आपको कोई लतीफे नहीं सुना रहा, ये हकायक बयान कर रहा हूं, लेकिन पहले अपने दिमाग को तैयार कर लो कि बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, मैंने गुस्सा नहीं करना, बाद में आके गुस्सा निकालो, लेकिन बाद में गुस्सा फिर रहता नहीं है, खाने में मसाइल होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं, तो इसलिए बड़ी टेंशन का काम है भाई खवातीन को हज कराने, लेकिन सवाब बहुत है, कराया करो। ज़कात के लिए साल पूरा होने की शर्त है, अगर कोई ऐसा माल आए जो लिक्विड यानी कैश की में मिक्स ना हो तो इसके साल होने के साथ, ना ना ना, जब भी ज़कात वाली तारीख से एक दिन पहले भी माल आ गया ना जो बेचने की नीयत से खरीदा है, तो ज़कात वाली तारीख में उसका भी हिसाब होगा, सब मिक्स होगा। अगर औरत के पास अपना कोई माल नहीं तो उसका उसका शोर करवाएगा, शोर के पास एक दिन माल, ये हो गया मसला, चलो भाई बहुत हो गया यार, बस करो। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।